बताएं और छोटी बहन वहाँ पर पीछे, मैं सोचता हूँ कि यह उस गीत को व्यक्त करता है, ओ परमेश्वर का प्रेम कितना भरपूर और शुद्ध है, कितना गहरा और अत्याधिक। यह हमारे लिए क्या ही दिन है। आइए बस शांति पूर्वक अपने सिर को झुकाकर प्रार्थना से ठीक पहले इसे प्रभु के लिए गाएं। बस टेडी, यदि तुम चाहो तो हमें थोड़ा गीत का स्वर देना और आइए इसे गाते हैं प्रार्थना से ठीक पहले अपने सिर झुकाए हुए आंखों को बंद करके। यदि स्याही सारा पानी स्याही में बदल जाए और सारा आकाश चमड़े का कागज बन जाए और धरती पर की हर एक डंठल एक कलम और हर एक मनुष्य व्यवसाय से लेखक बन जाए, फिर भी यह आदम की गिरी हुई जाति परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकती। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु यीशु के उस बहुमूल्य लहू के लिए और पुनरुत्थान की उस यादगार सुबह के लिए और आपका छुड़ाने वाला प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे हृदय में बहाया गया है, जो हमें उसके साथ एक संगति में लाता है, उस एक दैविक सृष्टिकर्ता के साथ धरती पर हमें एक भाईचारे में लाता है जिसे कभी भी पार नहीं किया गया है। ना कोई लॉज, ना कोई प्रतिज्ञा, ना कभी भी हो सकता है कभी भी फिर से जन्म पाए स्त्री पुरुषों के भाईचारे के साथ तुलना की जाए और हमेशा के लिए संत और दूतों का गीत होगा। हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप वो सब कुछ आशीष दें जिसे हम व्यक्त करने की कोशिश में करते हैं, हमारे हृदय में हमारे आभार जो आपके प्रति हैं, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए। यह जानकर कि उस सुबह न ही केवल चेलों का हृदय प्रसन्न हुआ, मरियम और मरियम मग्दलिनी का, लेकिन हम भी जो आज आपके चेले हैं, जब हम पाते हैं कि वो मरा नहीं है लेकिन जीवित है तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। हम होने पाए वह हमारे हृदय में हमारे बीच हमेशा जीवित रहे, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वहाँ पुनरुत्थान को व्यक्त करने वाला कभी कोई भी नहीं हो सकता है। अब इस पुनरुत्थान की सुबह कलीसिया में होने वाली छोटी छोटी चीजों के लिए यह एक बहुत ही शानदार समय है, जो कि माताएं अपने बच्चों को समर्पित करने जा रही हैं। ये कुछ तो नया है जो उनके घर में जुड़ गया है, उनके लिए कोई नई आशीष आई है और वे इसके बदले में इसे परमेश्वर को देना चाहते हैं। और उसके बाद वो सुबह का संदेश होगा, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आप अपनी बीमारी से नए स्वास्थ्य में पुरोहित हो जाएंगे। तब उसके तुरंत बाद उन लोगों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, हम उसका पुनरुत्थान करने जा रहे हैं, पानी में दफन होना जीवन के नएपन की ओर जिलाने के लिए। ये आज सुबह पूरी तरह से पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान। हमारा हृदय आनंदित और हल्का हो गया है जैसे हम गीत को गाते हैं और दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं इस अद्भुत पुनरुत्थान की सुबह, और हम बाहर की ओर देखते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर इससे प्रसन्न है, पेड़ फिर से जीवित हो रहे हैं। कुछ समय पहले वहाँ केंटकी में श्रीमान वुड और मैं गिलहरी का शिकार कर रहे थे और हम एक व्यक्ति के घर गए, वो व्यक्ति हो सकता है ठीक अभी बैठा हुआ हो जहाँ तक मैं समझता हूँ, और सोचता हूँ वो अविश्वासी था। और भाई वुड ने उससे पूछा, कहा क्या मैं आपके स्थान पर गिलहरी का शिकार कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ वुड, तुम गिलहरी का शिकार कर सकते हो वहाँ पीछे जाकर। उसने कहा तो ठीक है, मैं अपने पास्टर को साथ ले आया हूँ। और उसने कहा वुड, क्या तुम्हारा मुझे बताने का मतलब ये नहीं है कि तुम इतने नीचे जा चुके हो कि तुम्हें हर समय एक पास्टर को साथ लेकर चलना पड़ता है? और सो उसने मुझे अपने पास बुलाया कि मेरा परिचय करवाए। और उस व्यक्ति ने कहा था कि वो बल्कि एक तरह का कठोर व्यक्ति था। उसे दूसरों ने बताया था लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं देख सका था कि उसे विश्वास करने को लगाए। और वहाँ पर एक सेब का पेड़ लगा हुआ था जिसमें से मैंने एक सेब तोड़ा था। ये अगस्त का महीना था और मैंने सज्जन व्यक्ति से कहा, मैंने कहा वो पेड़ कितना वर्ष पुराना है, और उसने कहा यही कोई 30 वर्ष या ऐसा ही कुछ उसने इसे लगाया। और मैंने कहा आपने सेब को तब से खाया है जब से ये पेड़ फलों को देते आ रहा है? जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा उस पेड़ को क्या होता है? यदि आप इसे देखेंगे तो अब ये अगस्त महीना है, सारा समय मौसम गर्म रहता है, लेकिन अब उस पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं और जीवन का रस डालियों को छोड़कर जड़ में जा रहा है। यदि यहाँ पर यह सर्दियों में से होते हुए बना रहता है तो पेड़ अब और नहीं रहेगा, लेकिन वो ठंडी तेज हवाओं से अपने आप को छिपाने के लिए नीचे मिट्टी के अंदर चला जाता है। यदि यह यहाँ बना रहता है तो वो मर जाएगा, ये अब और सेब को नहीं लाएगा, लेकिन यह खुद को जड़ों में छुपाने के लिए नीचे चला जाता है, जिससे कि अगले वर्ष वापस आए कि आपके लिए कहीं से कुछ सेब और कुछ पत्तों को लेकर आए। और मैंने कहा अब श्रीमान मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन सी बुद्धि उस जीवन के रस को पेड़ को छोड़ने को लगाती है किसी भी ठंडे मौसम से पहले, और जो जड़ों के अंदर छिपने के लिए नीचे चला जाता है। यदि आप मुझे बता सकते हो कि यह कौन करता है और ये मुझे समझा सकते हैं कि यह कौन करता है, तो मैं आपको आपके हाथ को परमेश्वर पर रखने दूंगा। मैंने कहा आप किसी खंभे पर पानी डालिए और देखिए कि क्या ये ऐसा कर पाएगा, देखें कि क्या ये मौसम का परिवर्तन ऐसा कर पाएगा। वहाँ कोई महान बुद्धिमत्ता होती है जो जीवन के रस को पेड़ की जड़ में लेकर जाती है और फिर उसे नए जीवन के साथ वापस लाती है, यह परमेश्वर है। और उसने कहा मैं कभी भी इतना अधिक कलीसिया में नहीं गया हूँ। उसने कहा लेकिन एक बार यहाँ एक्टन के पास एक प्रचारक आया था और पहाड़ी पर रहने वाली एक किसी स्त्री को बताया कि उस रात उसकी बहन वहाँ सभा में गई थी, और उसे बताया कि वो एक बहन के लिए प्रार्थना कर रही है जिसे कैंसर है, और कहा मैं और मेरी पत्नी उसकी मदद करने के लिए वहाँ गए थे, और कहा उसकी हालत बहुत खराब थी जिसके पेट में कैंसर था, इतना तक कि उन्हें चादर के साथ बिस्तर पर उसे करवट बदलवाना पड़ता था और इत्यादि। उसकी बहन ने रुमाल को वापस लाया, कहा उस मनुष्य ने उसे उसकी परिस्थिति और इत्यादि के बारे में बताने के बाद कहा उस पर रुमाल को रखना, और कहा वो आज ठीक है, और ये केवल दिखाने के लिए है। मैंने कहा वही बुद्धिमता जिसने पेड़ में उस जीवन के रस को बताया वर्ष प्रतिवर्ष ठीक आपकी आंखों के सामने कि जड़ में नीचे जाकर और छिप जाता है, यह वही बुद्धिमता थी जिसने मुझे बताया कि वो महिला चंगी हो जाएगी जब वो रखेगी। मैंने कहा ये इतना रहस्यमय नहीं है, आपके पास एक बेहतर प्रचारक है जो आपके सामने आंगन में खड़ा हुआ है, वो पेड़ जो आपको वर्ष दर वर्ष बताता है। यदि हम चारों ओर देखें तो हम हर कहीं परमेश्वर को देखेंगे, वह हर पेड़ में है, घास में, हर पत्ती में है। परमेश्वर के अलावा कोई भी इसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। हम उसी तरह का कुछ तो उत्पन्न कर सकते हैं जो उसी तरह का दिखाई देता है, लेकिन उस जीवन को नहीं, यह परमेश्वर है। अब यहाँ के कुछ घरों में घास की एक छोटी सी पत्ती जुड़ती आ रही है और हम इन छोटे बच्चों को प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं। टेडी, हमारे पास यहाँ एक छोटा सा गीत है जिसे हम गाते हैं, उन्हें अंदर लाओ। क्या आप बस इसे बजाएंगे? जब माताएं जो चाहती हैं कि उनके बच्चों को समर्पित किया जाए, और पिता वे अपने छोटे बच्चों को यहाँ वेदी पर लाएंगे। और आज सुबह हमारे पास यहाँ वेदी पर बहुत सारे छोटे ईस्टर के फूल हैं, क्या हमारे पास नहीं है? ओ परमेश्वर, मैं कल्पना करता हूँ कि वहाँ छोटी छोटी मरियम, रूथ, रिबिका, साथ ही यहाँ छोटे छोटे याकूब, पौलुस और योहन्ना है, एक और पीढ़ी के लिए छोटे ईस्टर के फूल। यह अच्छा है, ठीक यहाँ मैं सोचता हूँ कि भाई बिलर इसकी तस्वीर लेना चाहते हैं, इस छोटे से बालक की जो यहाँ खड़ा है। ये भाई वुड का पोता है, बहन वुड यहाँ पर हैं, और बाकी के लोग अब उनके छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं। सीधे आगे आ जाएं मित्रों, ये ठीक है। भाई नेविल, पवित्र विवाह का मिलन महान है। यह परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है और पवित्र विवाह के जरिए से ये इन प्यारे छोटे बच्चे के जन्म को लेकर आता है। अब यहाँ आपको मुझे इनका नाम बताना होगा, ब्रिंडा सुए। अभी तुम बहुत ही उस समय से अलग दिख रही हो बच्ची, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तो ठीक है, यहाँ छोटी ब्रिंडा सुए वुड है। वास्तव में हम सभी के हृदय के लिए एक बहुमूल्य छोटा सा खजाना है, और विशेष रूप से इस नौजवान माता और पिता के लिए। और बाइबल के समय में बहुत से लोग इन छोटे बच्चों पर छिड़काव करते हैं, लेकिन जितना हो सके हम बाइबल के प्रचलन का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। बाइबल में हमने कभी भी नहीं देखा कि जहां पर कभी उन्हें छिड़काव को किया गया था, लेकिन उन्हें प्रभु यीशु के पास लाया गया और उसने उन्हें आशीषित किया, और हम उन बच्चों को उसके सेवकों के रूप में लेते हैं और उन्हें उसकी ओर उठाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप समझते होंगे कि दादा को कितना गर्व होगा, आप जानते हैं। तो आइए एक क्षण के लिए अपने सिर को झुकाते हैं। प्रभु यीशु, परमेश्वर की संतान, जिसे हमारे अपराध के लिए भेजा गया था, और आपके पास लाए गए छोटे बच्चों को देखना क्या ही बहुमूल्य बात है, उस बात की यादगार में जो बहुत वर्ष पहले घटित हुई थी, जब माता और पिता अपने बच्चों को आपके पास लाए थे। आज हम आपके सामने थामे हुए हैं विश्वास की बाहों में छोटी ब्रिंडा सुए वुड को, जिसे हमारे भाई डेविड और उनकी बहुमूल्य पत्नी के परिवार में भेजा गया है। पिता परमेश्वर, इस बालक को आशीष दीजिए। वे आप में अपने विश्वास को अंगीकार कर रहे हैं, जैसे वे अपने संतान को सामने रखते हैं जो उनके विवाह से है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीष दें, और होने पाए उनका हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा गर्म हो जाए कि ऐसा ईश्वरीय जीवन हो, समर्पित जीवन हो, कि इस बालक को मसीह घर में लाया जाए, परमेश्वर की शिक्षा में पालन पोषण हो, और यहाँ धरती पर एक लंबा खुशहाल जीवन हो, और अपने जीवन के सारे दिनों में आपकी सेवा करें, और महिमा में जहाँ परिवार इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, होने पाए छोटी ब्रिंडा सुए और उसके पिता और माँ और उनके सारे लोग हों, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर इकट्ठा हों, मसीह के अनुग्रह के द्वारा छुड़ाए जाएं, जिसके लिए हम उसे अब उसकी ओर उठाते हैं। मेरी छोटी बहन, अब मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, उसकी सेवा के जीवन के लिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मर्लिन, डेविड, ढेर सारी खुशियाँ और सफलता दे। होने पाए वो छोटी बच्ची को परमेश्वर के राज्य के लिए जिए। अब यहाँ एक अच्छा लड़का है, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान है। उसका नाम शारन रोज डॉल्टन। डॉल्टन, क्या ये भाई एडी की बच्ची है? खैर, कुछ लगभग 22 वर्ष पहले परमेश्वर ने मेरी बाहों से एक छोटी शारन रोज को ले लिया, जो आज स्वर्ग में है, और अब उसे समर्पित करने के लिए छोटी शारन रोज डॉल्टन है। हम यहाँ भाई एड और बहन डॉल्टन को जानते हैं, हमारे बहुमूल्य मित्रों की नाई। क्या ही प्यारी बच्ची है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास इस छोटी शारन रोज को लेकर आए हैं, महान प्रभु यीशु की यादगार में, जो धरती पर खड़ा था और उन्होंने उसके लिए इस तरह की छोटी लड़कियों को लाया। मैं इस बच्ची के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। होने पाए यह जीवित रहे और हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे। होने पाए यह परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहे। इसके पिता और माता को आशीष देना। होने पाए इसे परमेश्वर की शिक्षा में ऊपर लाया जाए। वे आप पर उनके विश्वास को स्वीकार कर रहे हैं, जब वे अपने बालक को आपको अर्पण करते हैं। अब हम आपको देते हैं इस छोटी शारन रोज डॉल्टन को, कि आप उसके जीवन को आशीष देंगे प्रभु। मैं उसे उसके माता और पिता की बाहों से आपको अर्पित करता हूँ, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, उसकी महिमा के लिए, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, और आपको भाई। ओह परमेश्वर, एक छोटा सा बीमार लड़का, उसकी क्या परेशानी है? कुछ तो अलग, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं आपके लिए इस छोटे मेसन को पकड़ता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कि आप इस बालक को, जिसे मैंने यहाँ अपनी बाहों में पकड़ा है, ताकि उसे आपके लिए समर्पित करूँ। मैं उस पर इस रोग को शापित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। होने पाए कि छोटा मेसन आपकी बाहों में रखा जाए प्रभु, और होने पाए कि रोग उसे छोड़कर चला जाए। होने पाए बालक परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए जीवित रहे। माता पिता विश्वास को व्यक्त कर रहे हैं जब वे उसे लाते हैं। होने पाए आप बालक को चंगा करें और उसे स्वस्थ करें। होने पाए वो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहे, ताकि आपकी सेवा करे। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको छोटे मेसन को देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उसके जीवन के लिए और उसकी चंगाई के लिए। आमीन। केवल अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। ओ, छोटी लड़की भी है, तो ठीक है, यह अच्छी बात है। यहाँ ऊपर आ जाएं, छोटी बच्ची, ठीक यहाँ पर खड़ी हो जाएं। आपका नाम है सुमनेर, भाई और बहन सुमनेर। मैं सोचता हूँ कि आप जॉर्जिया से हैं, क्या आप नहीं हैं? मैंने सोचा, मुझे प्रार्थना याद है, यहाँ नीचे बहुत से लोग हैं। यह है लेटरल, ड्वाइट और डेविड, आपने उनका नाम सुना होगा। होने पाए परमेश्वर उनके नामों को मेमने की जीवन की किताब में लिखे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह इस छोटी सी प्रिय को आपके पास लाते हैं। जैसे मैंने उसके सिर के छोटे गुंदे बालों पर हाथ को रखता हूँ, इन लड़कों के छोटे छोटे मुलायम बालों पर, हे प्रभु, उन्हें आशीष देना। उनके माता पिता ने अपने बच्चों को अर्पित करते हुए आप में अपना प्रेम और विश्वास व्यक्त किया है, और हम उन्हें आपको समर्पित करते हैं प्रभु, जैसा कि उन्होंने माता पिता की भावों से लिया है। आज सुबह यहाँ इस वेदी पर खड़े होने के लिए, ताकि परमेश्वर के निमित्त जीवन को समर्पित करें, उन्हें आशीष देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें खुश होकर जीने देना, उनके जीवन के सारे दिन, अनंत जीवन आने वाले संसार में। होने पाए कि वे मसीह घर में परमेश्वर की शिक्षा में पले बढ़े। अब यीशु मसीह के आदेश के द्वारा उसके सेवकों के लिए एक उदाहरण दिया कि उन्हें उसका अनुसरण करना चाहिए जैसा उसने किया है। मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में आपके लिए अर्पण करता हूँ। आमीन। वहाँ दूर जॉर्जिया की सूर्य चमकने के राज्य में इस बच्ची को उसके प्रिय पिता और उसकी माता ने यहाँ लाया है, इस यादगार सुबह पर आपको समर्पित करने के लिए। यह उनके परिवार में आपके अनुग्रह का चिन्ह है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप छोटी रैनी, उसके माता और पिता को आशीष दें, और वे आप पर अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। बालक को लाते हुए उस पर आपकी आशीष को चाहते हैं, और होने पाए वो जीवित रहे और अपने जीवन के सारे दिनों में एक मजबूत खुशहाल मसीह बनी रहे, और उन आने वाले दिनों में और उस आने वाले संसार में अनंत जीवन को पाए, इसे प्रदान करें पिता। जैसा आपने आज सुबह इतनी प्यारी छोटी चीजों को उठाया है, इन बच्चों के रूप में अपने खुद की बाहों में, परिवारों ने आप पर विश्वास को व्यक्त किया है उन्हें अपने सेवकों के पास लाने के द्वारा, और हम छोटी रैनी को आशीष देते हैं और उसे आपको देते हैं, उसके माता पिता की बाहों से आपके पास, यीशु मसीह के नाम में। होने पाए आप उसे आशीष दें। आमीन। आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे रैनी। आइए बस उस गीत का एक छोटा सा पद गाते हैं। मैं किस तरह से पंक्ति में खड़ा होना पसंद करता हूँ, और उनमें से हर एक छोटे बालकों के बारे में बात करना, लेकिन वैसे भी मैं बहुत धीमा हूँ और लोग खड़े हुए हैं। भाई वुड ने आज सुबह मुझे बताया, उन्होंने कहा खड़े होने से उनकी पीठ में दर्द होता है। आप नहीं जानते कि मैं आपके खड़े होने और प्रतीक्षा करने की कितनी सराहना करता हूँ, और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संदेश के साथ जाऊँगा, और आप बहुत ही ध्यान से सुनना। मेरे पास आज सुबह की सभा या आज सुबह इस संदेश को तैयार करने का समय नहीं मिला, बस कुछ ही समय मैंने एक विषय को लिया और जो कुछ तो अलग था, और पिछले ईस्टर को मैंने इस विषय पर प्रचार किया था, जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया, दफन होकर वो मेरे पापों को बहुत दूर ले गया, जी उठकर उसने हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से धर्मी ठहराया। किसी दिन वो आ रहा है, ओह महिमामय दिन। और फिर आज सुबह हमने इस विषय पर प्रचार किया, मैं जानता हूँ। और अब यदि प्रभु चाहे तो मैं संत मरकुस के अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ, और अब आप मेरे साथ प्रार्थना करें, और उसके तुरंत बाद चंगाई की सभा होगी, और तब चंगाई की सभा के बाद बपतिस्मा की सभा होगी, और उसके बाद सभाएं आज रात 7:30 बजे होगी। अब मरकुस 16, और जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी, यीशु की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि जिससे वे आकर और उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को दाहिने ओर बैठे देखा, जो लंबे श्वेत वस्त्र पहने हुए था, और वे बहुत चकित हुई। और उन्होंने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। अब सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, जब वे जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। आप देखो वे भी राख के ढेर पर थे, और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। परमेश्वर के वचन कितने रहस्यमयी हैं। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। और जब और उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास के कारण और मन की कठोरता पर उलहाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मैं 2 शब्दों से एक विषय को लेना चाहूँगा, जाकर बताओ। आप जानते हैं, यदि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आज की बहुत बड़ी अधिक परेशानी यही रही है। हम बताने जाते हैं, हम जाते हैं, लेकिन बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी नहीं जिससे लोगों को मदद मिले। लेकिन यदि हम इन चेलों के नाई निर्देशों का पालन करेंगे जिन्हें आज्ञा मिली थी, तो हमारे पास वही आज्ञा है, जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ, जाकर इसे बताओ। तब वो कहता है, जाकर इसे करो और इन चिन्हों को दिखाओ कि मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ। क्या ही संदेश है, जाकर बताओ और जाओ मेरे चेलों को ये बातें दिखाओ जो तुमने देखी है, कि मैं मरा नहीं हूँ लेकिन मरे हुओं में से जी उठा हूँ। सुबह के संदेश में आज सुबह के हमने देखा कि हम में से हर एक के पास परेशानियों और परीक्षाओं का एक छोटा सा राग का ढेर है, जिस पर हम कभी कभी बैठे रहते हैं, सहायक की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हमने देखा कि महान वृद्ध पुरुष अय्यूब को एक दर्शन मिला, क्योंकि उनके पास अभी तक ईस्टर नहीं था, लेकिन उसने 4000 वर्ष दूर आज की सुबह को देखा। उसने 4000 वर्ष दूर ईस्टर को देखा और उसकी पीड़ा में चिल्ला उठा, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अंतिम दिनों में वो धरती पर खड़ा होगा, भले ही खाल के कीड़े इस शरीर को नष्ट कर दें, फिर भी मैं अपने देह में परमेश्वर को देखूंगा। अब ईस्टर के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी, जाकर बताओ और यदि तुम बताते हो तो यह तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, जाकर और बताओ। अब यह कुछ भला नहीं करता है, जैसे कि मैंने कहा, जाने से जब तक कि आपके पास बताने के लिए कुछ न हो, और यदि आपके पास बताने के लिए गलत संदेश है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको बताना होगा कि रहस्य क्या है। कुछ समय पहले मैं एक किताब में पढ़ रहा था, एक छोटे लड़के की जिसने एक प्रतियोगिता में प्रवेश किया, और इस प्रतियोगिता में उसे खुद के एक नाम को ऊंचा करना था। कोई भी छोटा लड़का जो पासवर्ड को अपने मन में याद रख सकता है, जब तक कि वह एक ठहराए हुए स्थान पर नहीं पहुंच जाता, और उसे इस पासवर्ड को बोलना होगा, और तब द्वारपाल उसे वहाँ से भीतर जाने देगा। ये बच्चे के बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए था, और जब वो उस स्थान पर पहुँच जाता है तो उसको दिए गए पासवर्ड को उसे बोलना होता था, जिससे द्वार खुल जाएगा और वो एक बड़े सम्मान को जीतेगा। एक छोटा सा लड़का बहुत ही तेज तरार होने के कारण और अच्छी तरह जानता था कि वह प्रतियोगिता में बाकी सभी लड़कों को पीछे कर सकता था, या उसने सोचा कि वो कर सकता है। वह दिन प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता रहा, कैसे वो अपने छोटे फेफड़ों को फुलाता, उसने उसके भौतिक शरीर को काट छाट किया जिससे कि वो दौड़ते समय थक न जाए, और उसने अभ्यास किया कि किस तरह से अपने पैरों से शुरू करे और बाकी लड़कों से आगे सिर को झुकाया जाए, और किस तरह से दौड़ते समय उसे सांस लेना अवश्य है उसके शरीर में आने वाली ऑक्सीजन को रोके रखने के लिए, जिससे कि उसे पंप करते रहे ताकि यह उसके हृदय को बहुत ज्यादा धीमा न कर दे। उसने हर एक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जो वो कर सकता था, और सुबह में जब दौड़ शुरू हुई, एक नियत उम्र के 150 से अधिक छोटे लड़के एक ही कतार में खड़े हुए थे। यह छोटा सा लड़का अपनी उम्र के हिसाब से एक अच्छे आकार का लड़का था, और उसने अपना सारा प्रशिक्षण याद किया और वह तैयार हो गया। वे एक कतार में आ गए, उनके छोटे छोटे चेहरों को उस रस्सी के आगे की ओर रखा जो उनके आगे लगी हुई थी, उनके छोटे नाक को ऊपर करके इसके सामने टिकाया। उसने इसके सारे नियम का अध्ययन किया था, खुद को तैयार कर रहा था, और फिर जब बंदूक चलाई गई और रेखा टूट गई तो छोटे लड़के आगे की ओर कूद पड़े, और यह छोटा लड़का शारीरिक रूप से इतना दुरुस्त था, इतना तक कि वह बाकी के लड़कों से आगे की ओर कूद पड़ा, और आगे दौड़ के पथ से वह एक जबरदस्त गति के साथ चला गया, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, यहाँ तक कि वह दौड़ में शामिल हर एक लड़के से आगे नहीं निकल गया, और वह वहाँ पर था ओह काफी लंबा समय, शायद एक मिनट या उससे अधिक, सबसे सर्वश्रेष्ठ दूसरे दौड़ने वालों से आगे स्थान पर पहुँच गया। लेकिन उसके सारे शारीरिक प्रशिक्षण के समय पर वह पासवर्ड को भूल गया था। वो उसी चीज को भूल गया था जो उसे कहना था, जिससे कि उसे फाटक में से जाने दें। और उसकी गति आगे पीछे होने लगी और उसे सोचने लगा और अपने मन ही मन खोजने लगा। वो अपने शरीर की स्वाभाविक भौतिक स्थितियों में इतनी अधिक दिलचस्पी दिखाते आया था, यहाँ तक कि वह मुख्य बात को भूल ही गया था। आगे वह रेखा पर कुछ लड़के जो इतनी तेजी से नहीं दौड़े, उन्होंने पासवर्ड याद रखा और अंदर प्रवेश किया। वैसा ही आज है, हम बड़े बड़े पवित्र स्थानों और आराधनालयों और इमारतों और इत्यादि निर्माण में बहुत अधिक रुचि रखते हैं और बहुत अधिक हमारे कलीसियाओं को अच्छी तरह संवारने में दिलचस्पी रखते हैं, अच्छी इमारतों और अच्छे आलिशान कुर्सियों और अच्छे बजाने वाले वाद्यों के साथ। हमारे सेवक लोग बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हुए हैं, उनके पास डॉक्टर, डीएल, पीएचडी, एलएलडी की डिग्री है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम किसके लिए दौड़ रहे हैं। यही परेशानी है। जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ और मैं उनसे गलील में मिलूंगा। हम मुख्य शब्द को भूल गए, हम दूसरे कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं, बड़ी बड़ी कलीसिया बनाना, बड़े संप्रदाय बनाना, इतना तक हम मुख्य शब्द को भूल गए हैं। बहुत से लोगों के जीवन बचाए जाते रहे हैं आगे होने वाले घटनाओं की तैयारी की वजह से। कुछ समय पहले मुझे बताया गया था कि फ्लोरिडा में समाचार बताने वाले ने मौसम विभाग के एक समाचार प्रसारण को भेजा कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, और एक मनुष्य मुर्गी पालन चलाने वाला था और वो उसके उस पड़ोसी के पास गया और उसे बताया कि तूफान आने वाला है। उसने अनदेखा किया और कहा बेहुदा बात है, और वह बस अपना काम करता रहा। उसने कभी अपने मुर्गियों को व्यवस्थित नहीं किया, वह कभी भी मुर्गियों के बाड़े में नहीं गया, उसने कभी कोई भी व्यवस्था को नहीं किया। और उसके पड़ोसी ने व्यवस्था की, लेकिन सारे वे जिन्होंने चेतावनी को नहीं लिया, उसके सारी मुर्गियां उड़कर और मर गई। उसका घर टूट गया था, उसकी पूंजी का नुकसान हो गया था, उसे अस्पताल भेज दिया गया था, सब कुछ क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया और चेतावनी को नहीं लिया। वह जानता था कि संदेश को दिया गया था, लेकिन वो संदेश पर ध्यान देने में चूक गया। इसी तरह से ये आज होता है हमारे बहुत से लोगों के साथ, हमारे बहुत से कलीसियाओं के साथ। हम जानते हैं कि बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम जानते हैं कि बाइबल सिखाती है, यीशु ने संत यूहन्ना 14:12 में कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बढ़कर काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब हम दूसरी चीजों में रुचि रखते आए हैं, ना ही चेतावनी को लेते हुए, ना ही ध्यान देते हैं। हम दौड़े हैं लेकिन संदेश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जा चुके हैं लेकिन नहीं जानते कि वहाँ पहुँचने पर क्या बताना है। कुछ दिनों पहले जब इस संसार की कलीसियाएं, जब मसीही कलीसियाओं को शर्मिंदगी और अपमान में लाया गया था, जब आदरणीय और प्रसिद्ध और परमेश्वर का भय मानने वाले सेवक बिली ग्राम को बाइबल के साथ आमने सामने लाया गया था, वो दौड़ा था लेकिन संदेश को भूल गया था। जब उस मुस्लिम ने उसके सामने खड़े होकर उससे कहा, यदि ये परमेश्वर का वचन है तो आओ हम देखें कि आप इसे प्रकट करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से दौड़ा था, बड़ी बड़ी बेदारियां, बड़ी बड़ी चीजें की थी, लेकिन जब ये बात उस स्थान पर आती है तो उसके पास संदेश नहीं था। मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूँ। शारीरिक रूप से दौड़ते हुए बढ़िया कलीसियाएं, बहुत से सदस्य, बड़े संप्रदाय, लेकिन ये वो मुख्य बात नहीं है। देखो पीछे पीछे क्या आता है, ये चिन्ह उनके पीछे आएंगे, वे जो विश्वास करते हैं। जाओ लेकिन नहीं जानते क्या बताना है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को कभी नहीं भेजा जब तक वो उसे कहने के लिए कुछ नहीं देता है। परमेश्वर हमेशा अपने वचनों की पुष्टि करता है। जाते हैं लेकिन जब आप पहुंचते हैं इसे नहीं बता पाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेदारियां कितनी बड़ी है, आपकी कलीसिया कितनी बड़ी है, या आपके संप्रदाय दूसरों पर कितना हावी होते हैं। यदि आपके पास उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास क्या है सिवाय एक साथ इकट्ठा हुए लोगों के झुंड के जैसे लॉज होता है। हमारे पास संसार को बताने के लिए एक संदेश है, यीशु जीवित है, वो मरा नहीं है, संदेश पर ध्यान देते हुए। इस बड़े राष्ट्र में जिसके लिए हम अब धन्यवादित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी सारी अव्यवस्था में, इसकी सारी अश्लीलताओं में, इसके सारे बुरे उदाहरण में, फिर भी ये संसार का सबसे महान राष्ट्र है। और आरंभ में क्योंकि ये सही तरह से व्यवस्थित था, इसने संदेश को बनाकर नहीं रखा। बहुत वर्ष पहले जब यह उसकी प्रथम अवस्था में था, तो मेरे मन में एक कहानी आती है कि ब्रिटेन इस राष्ट्र के राष्ट्रमंडल को कब्जे में लेने जा रहे थे, और वहाँ पुरुषों का एक झुंड था जिन्होंने खुद को एक साथ एकत्र किया था और कर्तव्य पर थे, देख रहे थे, और वहाँ एक घोड़ा बंधा हुआ खड़ा था और एक घुड़सवार किसी भी क्षण चढ़ने के लिए तैयार था। पहली चीज उसे एक इशारा मिल गया कि ब्रिटिश आ रहे थे, और वो उसके घोड़े पर टांग फैलाकर बैठ गया। उसे उसके घोड़े को दौड़ाने से क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा कि घोड़े को मारे और उस कलीसिया से बोस्टन तक अपना रास्ता बनाने की कोशिश करे, यदि उसके पास लोगों को बताने के लिए कोई संदेश ही नहीं होता है, तो उसका क्या फायदा होगा। वे कैसे जानेंगे कि खुद को तैयार करना है। हमारे आधुनिक पॉल रेवरे ने अच्छी दौड़ को लगाई है, लेकिन वे बस दौड़ रहे हैं, वहाँ कोई संदेश नहीं है। वो घड़ी यहाँ पर है, संकट जारी है, संसार अंत में है, कलीसियाएं अपने चरम बिंदु पर पहुँच गई हैं, राष्ट्र अपने चरम बिंदु पर पहुँच गए हैं, मनुष्य जीवन अपने चरम बिंदु पर पहुँच गया है, विज्ञान अपने चरम बिंदु पर पहुँच गया है। हम संगठित हो गए हैं और बड़े बड़े आराधनालय बनाए हैं, हमारे प्रचारकों को चमकाया है और शारीरिक रूप से उन्हें एक साथ व्यवस्थित किया है, जो वे जानते हैं उन्हें अपने शब्दों में क्रियाओं और क्रिया विशेषणों और उनकी आवाजों को कैसे उपयोग करना है, और उनके सारे शब्द स्वर और हर एक चीज बिल्कुल ठीक मनोविज्ञान में कैसे उपयोग करना है, जिससे कि लोगों से संपर्क कर सके। लेकिन ये वो नहीं था जो यीशु ने कहा, मेरे नाम में वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा से बोलेंगे, यदि कोई घातक सर्प भी उन्हें काट ले तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। संसार को एक संदेश के साथ संदेशवाहक की आवश्यकता है, ताकि कुछ तो बताए और जाने कि संदेश कहाँ से आया है और यह किससे आया है। पॉल रेवरे जैसे ही वह अपने घोड़े पर चढ़ा, एक बहादुर व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो वहाँ इतिहास में तब तक रहेगा जब तक वहाँ एक राष्ट्र है जिसका इतिहास होना है। उसने कलीसिया की सीढ़ियों से उस यादगार सवारी को किया, एक संदेश के साथ जिसने सबसे कंगाल से लेकर सबसे धनी तक सभी को सावधान कर दिया, किसान से लेकर व्यापारी तक। ब्रिटिश आ रहे हैं, और तुरंत तैयारी करने वाले पुरुषों ने खुद को हमले के लिए तैयार किया, और यह महान राष्ट्र बच गया। यदि यह परमेश्वर की विरासत, यदि यह लोग जिनके लिए परमेश्वर मरा, यदि यह कलीसिया जिसे उसके नाम से पुकारा जाता है, इसे कभी बचाया जाना है, तो हमारे पास सियासन से एक संदेश के साथ एक संदेशवाहक होना है, ताकि इस दिन की चुनौती का सामना कर सके। वहाँ एक गोलियात है, लेकिन परमेश्वर के पास कहीं न कहीं अवश्य ही दाऊद होगा। हमें संपर्क को लेना है, हमारे पास एक होना, हमारे पास एक संदेश होना चाहिए। हम जा रहे हैं, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं है। ये इसे साबित करता है, जब हम एक स्थान पर आते हैं जहाँ एक राष्ट्र या लोग जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होने का इंकार करते हैं, और आज के हमारे सबसे चुनौतीपूर्ण सेवकों के सामने खड़े होते हैं, और फिर हमारे बड़े कलीसिया संगठन में कुछ 20 या 30 वर्षों से साम्यवाद के दस्तावेज लिए हुए पाते हैं कि वे साम्यवाद पार्टी के सदस्य हैं, हमारे संयुक्त कलीसियाओं में हम क्या कर सकते हैं? यह दिखाता है कि वे बिना एक संदेश के दौड़े हैं, राष्ट्र के जन्मसिद्ध अधिकारों को बेच रहे हैं, कलीसिया के नियमित जन्मसिद्ध अधिकारों को बेच रहे हैं। यह सब एक अंतिम मुकाबले पर आ गए हैं। यह एक ऐसे स्थान पर आए हैं कि वो छोटी कलीसिया संदेश पर विश्वास करती है और दोनों पैरों पर खड़ी है। उनकी आंखें क्रूस पर केंद्रित किए हुए हैं। उनके हृदय में यीशु मसीह का पुनरुत्थान जल रहा है। यह एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहां राष्ट्रों को इसे पहचानना होगा। यह एक अंतिम मुकाबले के लिए है। कोई आश्चर्य नहीं कि कलीसियाएं, जब कलीसियाओं का परिषद यह साम्यवादी के साथ इतना मधु का छट्टा हो गया है, कोई आश्चर्य नहीं कि वे अलौकिक में विश्वास नहीं कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे जैविक चंगाई में विश्वास नहीं कर सकते। उनके पास हृदय में कोई संदेश नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वे कितने भी तेजी से दौड़ रहे हों। यदि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के हृदय में आता है तो वो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और वो उसमें जीवित है कि वो करे और उस इच्छा को पूरी करे जिसे वो करने के लिए आया। वो इच्छा मनुष्य के जीवन के जरिए से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। लेकिन समस्या ये है, हम दौड़ते हैं, हम बिना एक संदेश के जाते हैं, हम धर्म ज्ञान के साथ जाते हैं, हम वचनों के किसी तरह के कलीसिया के अनुवाद के साथ जाते हैं। हमें तो पुनरुत्थान के साथ जाना है। जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैं एक नई कलीसिया को संगठित करूंगा। नहीं महाशय, जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं होऊंगा। आज की सुबह कलीसिया के लिए यही संदेश है कि यीशु मरा नहीं है, वो जीवित है और बस आज भी उतना ही महान और सामर्थी है जितना वो हमेशा से था। हमारे पास चेतावनियों के बहुत से संदेश हैं कि तैयार हो जाएं। पॉल रेवरे और दूसरे महान पुरुषों के और बड़े बड़े युद्ध और तूफान और इत्यादि, फिर परमेश्वर धैर्य देने के संदेश भी भेजता है। यह एक धैर्य देने का संदेश था। कुछ समय पहले जब दक्षिण में वे गुलामी में थे, बोअर्स जो वहाँ दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी किसान लाए गए, जिसे हम आज अश्वेत मनुष्य कहते हैं, और वे उनको यहाँ ले आए और दक्षिण में अमेरिकियों के हाथ में उन्हें बेच डाला कि उनमें से गुलाम बनाए। आज अफ्रीका में इसके विषय में बड़ा विद्रोह होता है, हत्याएं और इत्यादि बातें चल रही हैं। वे अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास इसके लिए लड़ने का अधिकार है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने गुलाम बनाए, ऐसा कभी भी इरादा नहीं था। कुछ वर्ष पहले मैं एक कॉलिजियम या मेरा मतलब एक बड़े संग्रहालय में था। मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था, अलग अलग तस्वीरें और चीजों को देख रहा था, क्योंकि मैं कला का चाहने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर कला में है। और मैं ऊपर चलकर गया और मैंने ध्यान दिया कि वहाँ एक बूढ़ा निग्रो व्यक्ति था। वह बहुत ही बूढ़ा था, उसके कंधे झुके हुए थे, उसके सिर के पीछे के बालों का बस एक छोटा सा किनारा था, उसने उसकी टोपी पहन रखी थी और वो इधर उधर घूम रहा था और कुछ तो इसी अंदाज से यहाँ वहाँ देख रहा था, जैसे कि मानो वह संग्रहालय में किसी चीज के लिए देख रहा हो या खोज रहा हो। मैं पीछे खड़े होकर और थोड़ी देर उसे देखता रहा और थोड़ी देर बाद वह वहाँ एक छोटे से बक्से के पास आया और उसने उसके अंदर की ओर देखा और वह चौंक गया और उसकी आंखें चमक उठी। वह एक मिनट में बक्से से पीछे की ओर कूद पड़ा, अपनी छोटी सी गोलाकार टोपी उतार दी, उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और मैंने उसे देखा। और जैसे ही उस बूढ़े अश्वेत ने अपना सिर झुकाया, उसके गालों पर से आंसू गिरने लगे और मैंने उसे अचंभित सा देखा काफी देर तक। तब मैंने सोचा, मैं देखूंगा कि ये बूढ़ा मनुष्य किस बात को लेकर इतना उत्साहित था। मैं घूमकर इस तरफ चलकर गया और यह मुझे वहाँ रखी हुई एक पोशाक के जैसे दिखाई दे रहा था और मैंने उसे वहाँ खड़ा हुआ देखा और मैं वहाँ चलकर गया। मैंने कहा, आप कैसे हैं अंकल? और उसने कहा, आप कैसे हैं महाशय? और मैंने कहा, मैं एक सेवक हूँ। आपको इस स्थान पर प्रार्थना करते हुए देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप एक मसीही हैं। उसने कहा, मैं मसीही हूँ महाशय। और मैंने कहा, किस बात ने आपको इतना अधिक उत्तेजित किया है? उसने कहा, यहाँ पर आइए। और मैं वहाँ पर उस बूढ़े मनुष्य के साथ चला गया। उसने कहा, आप उस पोशाक को देखते हैं? मैंने कहा, जी हाँ महाशय। उसने कहा, आप वहाँ उस धब्बे को देखते हैं? मैंने कहा, जी हाँ महाशय। कहा, अपने हाथ को मेरी बगल में रखें। मैंने कहा, यह खुरदरी जगह क्या है? उसने कहा, एक दिन एक गुलाम का पट्टा वहाँ बगल में बंधा हुआ था और यही वो अब्राहम लिंकन का लहू है। उसने कहा, उसके लहू ने मेरी गुलामी के पट्टे को उतरवा दिया। कहा, क्या ये आपको भी उत्तेजित नहीं करता? मैं अचंभित होकर वहीं पर खड़ा रहा। मैंने सोचा, यदि अब्राहम लिंकन का लहू एक गुलाम को उत्तेजित करता है, एक गुलाम के पट्टे को उसके ऊपर से उतरवाने पर, तो यीशु मसीह के लहू को क्या करना चाहिए उन लोगों के लिए जो यहाँ रोसेला के जैसे हैं, जो शराब की गुलाम थी, मेरे लिए जो मर रहा था एक तुच्छ अभागा। उसने मेरे हृदय से पाप की गुलामी के पट्टे को निकाल दिया। क्या यह एक मनुष्य को उत्तेजित नहीं करना चाहिए? क्या ये उसे भिन्न महसूस करने को नहीं लगाना चाहिए? जब वह इसके बारे में सोचे तो क्या उसे उसका आदर करने को नहीं लगाना चाहिए? आप बिना सिर झुकाए एक पेड़ को नहीं देख सकते हैं, शायद ही ये जानते हुए कि यीशु ने उस पेड़ पर आपके जीवन को छुड़ाया था। जैसा कि हम कुछ समय के लिए इसे जारी रखते हैं गुलामों के विषय में, और हमारे विचार एक घोषणा की गई थी, घोषणा जो दासत्व मुक्ति की थी, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और गुलाम एक ठहराए हुए दिन पर आजाद होने जा रहे थे। आप नहीं जानते, ओ यदि आपकी कभी भी मसीह से भेंट नहीं हुई है तो आप कभी भी नहीं जानेंगे कि उन गुलामों के लिए इसका क्या महत्व था। जब ये संदेश पूरे देश भर में चला गया कि तुम फलाना और फलाना दिन पर दिन के उजाले में आजाद होने जा रहे हो, तुम आजाद होने जा रहे हो, आपको अब और गुलामी के पट्टे को नहीं पहनना पड़ेगा और न ही आपको कोई और चाबुक पड़ेगा, लेकिन आप आजाद हो और आप इस बड़े संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हो। एक फलाना फलाना सुबह को दिन के उजाले के बाद तुम अब और गुलाम नहीं रहोगे। ओह, बड़ी अपेक्षा के साथ उन्होंने प्रतीक्षा की। यदि पापी केवल इसे देख सकता, यदि पापी केवल सच्चे सुसमाचार को सुनेगा, न ही कलीसिया के साथ जुड़ना, लेकिन सुसमाचार के प्रचार को, कि तुम पाप से आजाद हो सकते हो, कि तुम अपनी बीमारी से आजाद हो सकते हो, एक फलाना फलाना समय पर, यही वो समय है, आप विश्वास करें। आप जानते हैं, वे गुलाम इतने उत्सुक थे और ऐसी अपेक्षा के अंदर थे, उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि वे आजाद हो जाएंगे। इतना तक वे मुझे बताते हैं कि वे एक पहाड़ी की सबसे निचले स्थान पर इकट्ठा हुए, माताएं और छोटे बच्चे, सारे लोग इकट्ठे हुए, और कुछ बूढ़े थे, और वे मध्य रात के आसपास पहाड़ी की चोटी की ओर चढ़ने लगे। वे जानते थे कि जब दिन आरंभ होगा और सूरज निकलेगा तो वे आजाद हो जाएंगे। ये पहाड़ी की सबसे ऊपर चोटी से सूरज को चमकने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन उनमें से कुछ पहाड़ी की सबसे ऊपर चोटी पर थे, देख रहे थे, ओह जब सूरज उगने लगता है हम आजाद हैं। वह SON पुत्र था, मेरा मतलब SUN सूर्य था। लेकिन जब इन दिनों में से एक दिन SON पुत्र ऊपर आता है, और जब लगभग 1900 वर्ष पहले SON पुत्र ऊपर आया, तो उसने हर गुलामी के पट्टे को तोड़ डाला, उसने हर बंधुए को आजाद कर दिया, उसने हर बीमारी को चंगा किया, उसने उन्हें जो बंधन में थे उन्हें आजादी दी। हमें किस तरह से ऊपर चढ़ना और देखना चाहिए। और जब सूरज की हल्की सी झलक ऊपर आई, तो पहले वो मनुष्य जो सबसे ऊंचे स्थान पर था इसे देखा, और उसने नीचे अगले मनुष्य को चिल्लाया, हम आजाद हैं। और अगला मनुष्य पहाड़ी से नीचे की ओर उस मनुष्य को ऊंचे स्वर में चिल्लाया, हम आजाद हैं। जब तक ये बात नीचे शिविर तक नहीं आ गई कि हम आजाद हैं, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा था, वे इंतजार कर रहे थे, उस घड़ी के लिए इंतजार कर रहे थे। हमें किस तरह से और अधिक आज इंतजार करना चाहिए परमेश्वर के SON पुत्र के लिए। हम पाप से आजाद हुए हैं, हम बंधनों से आजाद हुए हैं, हम आदतों से आजाद हैं, हम धूम्रपान, शराब, मदपान से आजाद हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का SON पुत्र कब्र में से जी उठा है और सारी बेड़ियों को तोड़ डाला है। सारे दोष जा चुके हैं, कर्जे को चुका दिया गया है, जुर्माना भरा जा चुका है, पाप धुल चुके हैं, और हम आजाद हैं। ओह, हम आजाद हैं लोगों, गुलामी आजाद। जब परमेश्वर का पुत्र अपने पंखों में चंगाई के साथ ऊपर आता है, किसी दिन वह सिंहासन पर से उठेगा, धरती पर वापस आएगा, और उसके बाद हम सारे कष्टों और सारे परीक्षाओं से आजाद हो जाएंगे, सारे नश्वर दर्द से, और जो कुछ भी नश्वर जीवन के साथ होता है उससे आजाद हो जाएंगे, ताकि उसके साथ हमेशा के लिए रहें। हम आजाद हो जाएंगे। जाकर बताओ, यही वो चीज है जो करना है। बाइबल के समय में एक जुबली का वर्ष आता था, जो लोग कर्ज के लिए बिक गए थे, जो उनका बकाया था, उन पर कर्जा बाकी था और वे उसे चुका न सके, सो उन्होंने जाकर और अपने आप को गुलाम होने के लिए लोगों को बेच डाला, और उन्हें उनका गुलाम होना था, उनका गुलाम उनके सारे जीवन भर के लिए। लेकिन हर बार अक्सर वहाँ एक अनुग्रह का दिन आता, जिसे जुबली के वर्ष के नाई जाना जाता था, और जब जुबली का वर्ष आता था तब एक याजक बाहर निकलकर और एक तुरही को फूंकता, और वो तुरही हर गुलाम को संकेत देती थी, चाहे वो कितने लंबे समय से सेवा कर रहा हो और उसे कितने समय तक सेवा करना था। जब वो तुरही फूकी जाती है तो वह गुलाम आजाद हो जाता है। वह फावड़े को नीचे रखकर और अपने बच्चों के पास घर जा सकता था। उसे अब और काम नहीं करना होगा, क्योंकि जुबली बजने पर वह आजाद हुआ था। उस तुरही ने अनिश्चित आवाज नहीं दी, लेकिन उसने एक निश्चित आवाज दी है, और वह मनुष्य अपने उपकरण को नीचे रखकर गुलामी से आजाद होकर घर जा सकता था। आज सुबह बाइबल ने कहा, और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन जानेगा कि क्या करना है। यदि बाइबल ने प्रचार किया है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, और आज तुरहियां जो आज हम सुनते हैं वे कहती हैं, अद्भुत कार्य के दिन बीत गए, देव चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, कौन जानेगा कि खुद को कैसे तैयार किया जाए। आज हमें क्या आवश्यकता है? परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त संदेश वाहकों की। वह मरे हुओं में से जी उठा है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, यही आज के दिन का संदेश है। ओह, बहुत से महान संदेश होते आए हैं, लेकिन ईस्टर उन सभी को ढांपता है। महान संदेश ये सब ईस्टर था, जब मृत्यु की तैयारी की गई थी कि अंतिम शत्रु। हमने पुराने नियम में बीमारी को चंगा होते देखा था, हमने पुराने नियम में किए गए अद्भुत कार्यों को देखा था। वहाँ पुराने नियम में दर्शन आए थे, लेकिन हर एक मनुष्य सीधे कब्र में चला गया, यह सोचकर कि वह फिर से कभी तो जी उठेगा। लेकिन ईस्टर की सुबह जब इन चेलों को सबसे बड़ा संदेश मिला जो अब तक किसी भी मनुष्य को मिल सकता है, उन्हें कौन सा संदेश मिला? जाकर मेरे चेलों को बताओ, मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ। मृत्यु को जीत लिया गया था। धरती पर कभी भी कोई नहीं था, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई महान व्यक्ति, ना ही कोई भी संत कभी भी विजय प्राप्त कर सका। वे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बीमारी पर जय पा सके थे, वे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समय को जीत सके थे और आने वाली चीजों को पहले से देख सके थे, वे उस पर जय प्राप्त कर सके थे। लेकिन वहाँ कभी भी एक अभिषेकित मनुष्य नहीं था जो परमेश्वर की ओर से ऐसे अभिषेक के साथ हो जो इस बयान या कथन को कर सके, मैं अपने जीवन को ले सकता हूँ, मैं इसे फिर से जिला उठाऊंगा, इस देह को गिरा दो, मैं इसे तीसरे दिन जिलाऊंगा। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो ऐसा बयान दे सके, और ये उनके मन में बात चल रही थी कि क्या ये सच होगा या नहीं। लेकिन ईस्टर की सुबह पर उन्हें एक संदेश मिला, सारे जगत में जाकर हर एक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि संसार के अंत तक। वह जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बच जाएगा, जो विश्वास नहीं करता वह नाश हो जाएगा, और विश्वास करने वाले के पीछे ये चिन्ह जाएंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, यदि वे सांपों को भी उठा लें या घातक वस्तुएं पी जाएं, तो उससे उनकी हानि न होगी, यदि वे बीमारों पर अपने हाथ को रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। ईस्टर का संदेश यह वहाँ पर सबसे उत्कृष्ट संदेशों में से एक है, मृत्यु को जीत लिया गया था। हम एक जय पाने वाले के बारे में सोचते हैं, नेपोलियन ने 33 वर्ष की उम्र में संसार को जीत लिया था, उसने संसार को जीत लिया, उसने वहाँ के हर देश को पछाड़ दिया जिसे पछाड़ा जाना था, और वह बहुत ही निराश था क्योंकि वहाँ लड़ने के लिए और कोई नहीं था। वह बैठकर रोने लगा, लड़ने के लिए कोई नहीं था, लेकिन उसने लड़ाई के नियमों को अनुचित तरीके से चला। उसकी सेना के पीछे पीछे हजारों वेश्याएं चली, वह बंदूक और तलवार को लेकर निकला। 33 वर्ष की उम्र में उसने संसार को जीत लिया था, लेकिन वो एक समय एक शराब का विरोध करने वाला था और अत्यधिक शराब पीकर नशे में मर गया, क्योंकि उसने लड़ाई के नियमों को अनुचित तरीके से चला था। वह संदेश को भूल गया था, वो जीत गया था लेकिन वो संदेश को भूल गया था, वो गया लेकिन वो भूल गया कि वो किस लिए जा रहा था, छोटे लड़के की तरह जिसने दौड़ को दौड़ा, जैसे आज कलीसिया दौड़ रही है, जैसे लोग जो दौड़ रहे हैं, जैसे राष्ट्र दौड़ रहा है। हमारा सहारा परमाणु बम नहीं है, हमारा सहारा यीशु मसीह और उसका पुनरुत्थान है। नेपोलियन मुख्य बात को भूल गया था, उसे क्या हुआ, वह पूरी तरह से पराजित होकर मर गया, एक शराबी मतवाला। क्यों? उसने लड़ाई को सही तरह से नहीं लड़ा, भले ही उसने शारीरिक रूप से संसार को जीत लिया था, उसने एक सेना तैयार की थी, वो एक प्रतिभाशाली सैन्य था, उसने हर एक देश को कब्जा किया और चीजों को किया कि वो जो उसके जैसा कोई भी दूसरा मनुष्य कभी नहीं कर सकता था और न ही कभी भी उसके जैसा किया था, लेकिन वह भूल गया था कि सच्चा संदेश क्या था। उसने इसे अधिकार में ले लिया था और अपनी सैन्य शक्ति को प्राप्त किया था, लेकिन वो प्रभु की शक्ति को भूल गया था। प्रभु की शक्ति हमारा ढांढस है, हमारे पास और कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई और सहारा नहीं, कोई नहीं। परमेश्वर दया करें, मेरे जीवन को ले लीजिए, लेकिन मैं कभी भी इस बात को न भूलूं कि मेरी शक्ति कहां से आती है, यह प्रभु की ओर से आती है। मैं संसार की अच्छी चीजों को नहीं चाहता हूं, मैं यीशु को चाहता हूं, मैं उसके पुनरुत्थान को मेरे जीवन में जलता हुआ चाहता हूं। वह 33 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह से कितना अलग था। 33 वर्ष की उम्र में यीशु के पास उसका सब कुछ था, उसने संसार को बनाया और वह संसार में था और संसार ने उसे नहीं जाना। उसने कभी भी खुद की कोई प्रसिद्धि नहीं बनाई, उसने कभी भी कोई सैन्य मनुष्य इकट्ठा नहीं किए, उसने कभी भी किसी कलीसिया को संगठित नहीं किया, उसने कभी भी अपने लिए कोई बड़ा नाम नहीं किया। वह कभी भी सिद्धांत, धर्म ज्ञान और इत्यादि की किसी भी डींग मारने की डिग्री के साथ आगे नहीं आया। उसका कभी भी धर्म ज्ञान के किसी भी स्कूल में जाने का कोई लेखा जोखा नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर था, उसके पास परमेश्वर था। और 33 वर्ष की उम्र में उसने हर एक उस शैतान पर जय पाई थी जिसने अपने सिर को अधोलोक से बाहर निकाला था। उसने बीमारी पर जय पाई, उसने अंधविश्वासों पर जय पाई, उसने शैतानों पर जय पाई, उसने मृत्यु पर जय पाई थी। और जब वो क्रूस पर मरा तो वो अधोलोक के अथाह खड्डों में उतरा और अधोलोक पर जय पाई। और ईस्टर की सुबह उसने कब्र पर जय को पा लिया। क्यों? उसने संदेश के साथ दौड़ते हुए लड़ाई के नियमों को सही रीति से लड़ा। वो लड़ा था, वह चला गया, जाओ, परमेश्वर ने उसे भेजा और उसके पास उन्हें बताने के लिए एक संदेश था। और उस संदेश के साथ जिसे परमेश्वर ने उसे दिया, उसने शैतान की सामर्थ्यों पर जय को पाया, उसने बीमारी पर जय पाई, उसने मृत्यु पर जय पाई, उसने अधोलोक पर जय पाई, उसने कब्र पर जय पाई। क्यों? वो गया, जाकर बताओ, मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरा पिता मुझे करने के लिए दिखाता है, मैं कुछ नहीं करता लेकिन जो वो मुझे करने के लिए बताता है। फिर उसके मरने से पहले उसने ये कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ, ना ही सैन्य शक्ति के द्वारा पुरुषों को तैयार करना, ना ही अपना सारा समय इस बात में लगाते हुए कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। यह हो सकता है महत्वपूर्ण बात हो, लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है, संसार खत्म हो गया है। हमारे पास एक संदेश है, वो है यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कल एक छोटे से कोर्ट के कमरे में वे मुझसे कुछ ऐसा बुलवाने की कोशिश कर रहे थे जो सही नहीं था। मैंने कहा, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैंने कहा मैं ईमानदार हूँ और आप कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन वही जो सच है। और कोई एक व्यक्ति मेरे साथ था, कहा यदि कोई मनुष्य मुझसे इस तरह की बात करता तो मुझे उस पर एक किताब को फेंकने का मन करता। मैंने कहा, नहीं महाशय, नहीं, यह सही नहीं है, यह इसे सुलझाने का तरीका नहीं है, ये ठीक नहीं है। उसने कहा, अच्छा, आप क्यों नहीं जानते ये चीजें ऐसी चल रही हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा, मैं अपना समय यीशु मसीह की सेवा करने में व्यतीत करता हूँ। हे परमेश्वर, ओह, लोग अंधे हैं और इसे नहीं देख सकते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है उसे पिता ने भेजा और वह गया। उसके पास लोगों को बताने के लिए एक संदेश था और मृत्यु की घड़ी में उसने मृत्यु पर जय को पाया और उसने अधोलोक पर जय पाई और उसने कब्र पर जय पाई। जैसे पिता ने मुझे संदेश के साथ भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें संदेश के साथ भेजता हूँ, ना ही कलीसियाएं संगठनाओं को बनाने के लिए, लेकिन पूरे जगत में जाकर और पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रमाण दो। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं मेरे नाम से। वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा में बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और जैसे हमारे शरीर कब्र में जाते हैं जैसे उसने किया, उसने मृत्यु, अधोलोक और कब्र दोनों पर जय को पाया। वो पराक्रमी जय पाने वाला है। वह हमें उसके संदेश के साथ भेजता है। आओ संदेश के साथ आगे बढ़े, कुछ तो बात को बताने के लिए आगे बढ़े, जाकर बताओ, दौड़े नहीं और फिर बता न सकेंगे। आइए पहले इसे हमारे हृदय में उतारें। आज सुबह जब आप प्रार्थना करने के लिए ऊपर आते हैं तो अव्यवस्थित तरीके से न आए, अपने हृदय में संदेश को साथ लेकर आए। मैं वो हूँ जो मर गया था और फिर से जीवित हुआ हूँ। मैं ही वो हूँ जो संदेश को देता है। विश्वास करने वालों के पीछे पीछे ये चिन्ह जाएंगे। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक छोटे से तिरछी आग के बालक को ले सकता है और उसकी दृष्टि को वापस सामान्य कर सकता है, परमेश्वर एक बालक को ले सकता है। एक बालक जन्मा, अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा, और 16 वर्ष के होने तक तो उसकी आंखों की रोशनी उसे वापस लौटाता है। परमेश्वर दयनीय अभागे एक कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति को ले सकता है। और क्योंकि संदेश सही है, क्योंकि परमेश्वर ने संदेश को भेजा है, क्योंकि परमेश्वर ने संदेश वाहक को भेजा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि अधोलोक की हर बंदूक उस पर गोली दाग रही होगी। यह सही है, वह ठोकर खाकर और गिरेगा और उठेगा और अपने सिर को हिलाएगा और आगे बढ़ेगा। हमें एक संदेश मिला है, कोई भी इसे नहीं रोकेगा। हालेलुया, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध कभी भी प्रबल नहीं होंगे। वे कह सकते हैं, वे जो भी चाहते हैं, वे जो भी करना चाहते हैं। शैतान क्रोधित हो सकता है और चिल्ला सकता है, लेकिन यीशु मरे हुए में से जी उठा, वो आज हम में रहता है। कुछ दिनों पहले बड़े डॉक्टर लमसा से बात कर रहा था, जिन्होंने अरामी भाषा से अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद किया था, और मैंने वहाँ उस छोटे से चिन्ह को देखा। वहाँ पर परमेश्वर का चिन्ह था जिसमें तीन छोटे बिंदु थे। मैंने कहा, डॉक्टर लमसा, यह क्या है? उसने कहा, यह परमेश्वर है तीन गुणों के साथ। और मैंने कहा, आपका मतलब है परमेश्वर तीन कार्यालयों में रहता है, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा? वो उठ खड़ा हुआ और मेरी ओर देखा। उस यहूदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं भाई ब्रैनम? मैंने कहा, पूरी तरह से, यही मेरे हृदय में है। उसने मेरे चारों ओर हाथ को डाला और कहा, मैंने सोचा जब मैंने देखा कि वहाँ बड़ी बड़ी चीजें आगे होती जा रही हैं और वे चिन्ह जो आप कर रहे थे, कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। मैंने इसे अब तक विश्वास नहीं किया, अब मैं समझता हूँ कि आप हो। उसने कहा, ऐसा ही है, यही संदेश है, यही वो चीज है जो परमेश्वर के राज्य को हिला देगा। जी हाँ, उसने कहा, किसी दिन तो आप इसके लिए मरोगे भाई। कहा, तुम अपनी गवाही को उसी बात से मोहर लगाओगे। हमारे पास एक सबसे महान व्यक्ति हैं। जब आइजन हावर और संसार के महान पुरुष, हॉलीवुड, सभी प्रकार के फिल्मी सितारे और हर एक जन उसे बुला रहे थे, लेकिन वो ठीक वहाँ सभा में बना रहा। उसने कहा, मैं लगभग 30 वर्ष से इस अनुवाद को करता आ रहा हूँ, ना वेटिकन ग्रीक से, लेकिन अरामी से अनुवाद कर रहा हूँ, सीधे ठीक उसी से, अरामी से अंग्रेजी में। और उसने कहा, मैंने सारा समय बिताया है। उसने कहा, मैं अभी अभी उस स्थान पर पहुंचा हूं जहां मैं बाइबल के परमेश्वर को चलते फिरते हुए देखता हूं। उसने कहा, आप जानते हैं भाई ब्रैनम, हम चिन्ह और अद्भुत कामों को देख सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चिन्ह की आवाज क्या है। हम यहूदी, हम एक चिन्ह को देखते हैं, लेकिन हम चिन्ह की आवाज को देखते हैं। ओ हालेलुया, चिन्ह की आवाज। परमेश्वर ने मूसा को बताया, यदि वे आवाज को नहीं सुनेंगे, पहले चिन्ह की आवाज, उसके बाद वे दूसरे चिन्ह की आवाज को सुनेंगे, ना ही इतना अधिक चिन्ह, लेकिन इसके साथ आवाज चली गई। देखो, वो यहूदी, वो जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, मैंने विचारों को परखना देखा है, मैंने चिन्ह देखे हैं, चमत्कार देखे हैं, अंधों को ठीक होते हुए देखा है और सभी प्रकार के विभिन्न चिन्हों को, लेकिन मैंने सोचा, लेकिन अब मैं इसके पीछे की आवाज को देखता हूँ। परमेश्वर को तीन भागों में नहीं काटेगा, और कहते हुए वो एक परमेश्वर है, पिता और अगला पुत्र, वो कहता है परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर की तीन गुण, परमेश्वर के तीन कार्य स्थान, कहा यही इसकी पुष्टि करता है। ओ भाई, हमारे पास एक संदेश है, जाकर मेरे चेलों को बताओ, मैं वो एक नहीं जो मरा था और दूसरा एक जो मरने के निकट है और एक दूसरा जो जीवित है, मैं वो हूँ जो था, जो है और आने वाला है दाऊद का मूल और वंश, चमकदार और भोर का तारा। जी हाँ, यदि आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो जाने से क्या फायदा होगा? बताने के लिए कुछ तो होना है। ये सही है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आप सभी से प्रेम करता है, वो आप सभी के लिए मरा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करें। कितने लोग कभी उन सभाओं में रहे हैं और उसके महान चिन्हों और अद्भुत कामों को देखते हैं जो उसकी उपस्थिति के हैं, कि वह कैसे विचारों को जांचता है और दिखाता है और इत्यादि। यही स्वर्ग का परमेश्वर है जो मरे हुओं में से जी उठा है। आपको इसके इब्रानी चिन्ह के चिन्ह को देखना चाहिए। यह एक उज्याला है जैसे एक अग्नि का स्तंभ, और इसमें तीन छोटे निशान हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि तीन व्यक्ति नहीं थे। यह तीन कार्य स्थानों में रहने वाला एक परमेश्वर था, वही परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर, परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आप में, ये वही है। अपने आप को स्तर से नीचा कर रहा है, अपने कलीसिया को साफ करते हुए, जिससे कि वो रह सके। जब आप उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं और एक को यहाँ रखते हैं और एक को यहाँ पर और एक को वहाँ रखते हैं, तो यह मूर्ति पूजा या पागान है, जैसा कि यह हो सकता है। मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ, जो मरे हुओं में से जी उठा, और वो अकेला ऐसा पुरुष था जो कह सकता था, स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ मेरे हाथ में दी गई है। स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ मेरे हाथ में दी गई है। तुम सारे जगत में जाकर और हर एक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार न ही केवल शब्दों में आया, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रमाण में से होते हुए आया। परमेश्वर आपको इसका विश्वास करने में सहायता करे। परमेश्वर मुझे इसका विश्वास करने में सहायता करे, और हम किसी दिन यीशु को देखेंगे। जब जीवन के कठिन परिश्रम समाप्त हो जाते हैं, हम अंत में यीशु को देखेंगे उसके सुंदर सिंहासन पर। वो मेरा घर में स्वागत करेगा दिन बीत जाने के बाद। यह सही है। पैरों के निशान में रेत धुल गई है गलील के तट से उस अजनबी की। उन्होंने उसे मार डाला क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर बनाया और वो परमेश्वर था। उन्होंने उसे लटका दिया क्योंकि वह मृत्यु दंड के तहत मर गया। यही वो कारण है कि मैं मृत्यु दंड में विश्वास नहीं करता। यीशु उस मृत्यु दंड के तहत मरा जो रोम की संयुक्त सरकार की सजा थी। वो मृत्यु का दंड सूली पर लटकाना होता था। वो मृत्यु दंड के तहत मर गया। उसके कपड़े उतार दिए गए और वहाँ लटका दिया, उसे लज्जित किया, और वह उसी अवस्था में मरा। लेकिन परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन पर जिलाया, और हम उसके गवाह हैं। और यदि हम उसके लिए खड़े नहीं होते हैं, तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? एक दिन एक मनुष्य ने मुझसे भेंट की। उसने कहा, ओह भाई ब्रैनम, आप इसे ना बताएं, आप बताना छोड़ दें, आप महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं उनके बालों को छोटा करने के विषय में, और उनके ऐसा करने के विषय में, और वैसा करने के विषय में, और इसी तरह इत्यादि। मैंने कहा, यदि मैं उन्हें नहीं बताऊंगा तो उन्हें कौन बताएगा? इसे बताने वाला कौन है? कहा, तो आप उन प्रचारकों को गुस्सा दिलाते हैं। मैं चाहता हूं कि वे मुझ पर गुस्सा हो बजाय उस पर गुस्सा होने के। यही सच्चाई है, ये सही बात है। ठीक है, इसे बताने वाला कौन है? किसी को तो बताना ही होगा। यीशु ने कहा, जाकर बताओ, जाकर और बताओ, मेरे चेलों को जाकर बताओ कि मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक जगत के अंत तक। क्या आप विश्वास करते हैं दोस्तों? आइए हम प्रार्थना करें, जैसे हम अब प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाते हैं। हे पिता परमेश्वर, सच में जाकर बताओ, जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ। और पिता परमेश्वर, न ही केवल आपने अपने चेलों को बताया, लेकिन आपने उनको प्रमाणित किया कि आप मरे हुओं में से जी उठे हैं। आपने उनके साथ अपने आप को दिखाया, और आपने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया जैसा आपने मरने से पहले किया था। 1900 वर्ष आकर और चले गए प्रभु, संदेश अभी भी जल रहा है। यह आज भी हमारे हृदय में उतना ही प्रकाशमान है और जल रहा है जितना कि ये उन चेलों में था, क्योंकि हम उस जी उठे प्रभु को ठीक अपने बीच में देखते हैं, उन्हीं कामों को करते हुए जो उसने पहले किए थे। हम जानते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। ईस्टर हमारे लिए बहुत अधिक मायने रखता है, क्योंकि हम इसमें जुड़ गए हैं और उसके पुनरुत्थान की संगति में आनंद मना रहे हैं, क्योंकि हम एक समय पाप और अपराधों में मरे हुए थे उस उड़ाव पुत्र की नाई, लेकिन अब हमने अनुग्रह को पाया है और परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। वो हमें भी मोहर को करता है जैसे उसने पिता अब्राहम को किया, ये पुष्टि करने के लिए कि उसने हमें स्वीकार कर लिया है। पिता अब्राहम ने कहा कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन वो उसे खतने की मोहर देता है, एक पुष्टि की नाई कि उसने उस पर विश्वास किया है। और अब पिता, आज हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा खतना हुआ है, संसार की सारी चीजें जा चुकी है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपकी सेवा करें। हमारी एक ही इच्छा है, आपसे प्रेम करें, आपके चेले बने। और अब प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर एक हृदय के लिए इस छोटे से समाप्त हुए संदेश की पुष्टि करेंगे, वे इससे चूकने न पाएं। वह देखने दो कि आप कल, आज और युगानुयुग एक से हैं, कि आप यहाँ पर हैं, मरे हुए में से जी उठे हैं, और तब तक रहेंगे जब तक वो आत्मा और शरीर फिर से दूसरे आगमन पर एक साथ नहीं जुड़ते हैं। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज की सुबह यहाँ पर हैं। पिता, मैं अब इस ईस्टर की सुबह पर एक तरफ रखा है, या एक तरफ नहीं रखा है, लेकिन बस कुछ समय के लिए रखा है, वो दान जिसे आपने मुझे दिए हैं, जैसे कि विचारों को परखना। संसार में मैं सारे राष्ट्रों में इधर उधर जाता रहा हूँ प्रभु, वे सभी इसे जानते हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो संदेश आपने मुझे यहाँ ऊपर जंगल में दिया, जो कुछ दिन पहले कि उस सृष्टि करने की सामर्थ पर जो आज सुबह इस कलीसिया में स्थापित करती है, वही लोग जिस पर इसकी सृष्टि की गई थी। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जैसे कि मैं आज सुबह को बीमारों पर हाथ रखने के लिए आता हूँ यहाँ मेरे भाइयों के साथ, कि आप आज सुबह को इस कलीसिया पर दया के साथ उतर आएंगे और आप लोगों को चंगा करेंगे, कि जब सभा समाप्त हो जाए तो हमारे बीच में एक भी कमजोर व्यक्ति नहीं होगा। होने पाए उनमें से हर एक आशीषित और स्वस्थ हो। हम इस बात को समझते हैं प्रभु, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम स्वयं काम कर सकें। यह तो साधारण से बच्चे जैसा भरोसा है, विश्वास करते हुए। हम चेलों को बीमारों को चंगा करने की सामर्थ दिए जाने के बाद देख सकते हैं, वे आगे गए और एक मिर्गी के मरीज पर आकर पराजित हो गए थे, चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे, और हो सकता है ऊपर और नीचे कूद रहे हों और कोशिश कर रहे थे कि वो शैतान छोड़कर चला जाए। लेकिन जब वह यीशु के सामने आया, ओह कितना अलग! उसने कहा, तू दुष्ट आत्मा, उसमें से बाहर आ जा। क्या ही अंतर है! ओह, वो जानता था कि वो एक प्रेरित नहीं था, वो तो स्वयं प्रभु था। और उस आत्मा ने लड़के को खींचकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन यीशु ने कहा, वो मरा नहीं है, बस उसे उठाकर और उसे कुछ भोजन दे दो। दुष्ट आत्मा चली गई थी। हे यीशु, तू जो परमेश्वर का पुत्र है, फिर से या अपनी कलीसिया को स्वतंत्र रूप से अभिषेक कर पूरी तरह से सामर्थ्य से। होने पाए कि जीवित पुनरुत्थित यीशु का आत्मा आज सुबह इस छोटी सी कलीसिया को पुनरुत्थान करे, एक नए विश्वास में, सामर्थ्य में, विश्वास की सामर्थ्य, जिससे कि हम हर एक विरोध करने वाले को लज्जित करें, इसे प्रदान करें। प्रभु, इन सारे लोगों को आपको सौंपते हैं, ये मांगते हैं कि आप उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें उनके प्राणों का उद्धार दीजिए, उनके देहों को चंगाई दीजिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। और हमारे सिर को झुकाए हुए मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, क्या यहाँ कोई है जो एक मसीही नहीं है, जो अब याद करवाना चाहता है और कहे, मेरे लिए प्रार्थना करें भाई ब्रैनम? वहाँ पर परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई और है? मैं एक मसीह नहीं हूँ, मैंने यह खबर को सुना है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा, लेकिन वास्तव में मैं इसे नहीं जानता। वो मेरे हृदय में कभी नहीं जी उठा, मेरे पास कोई संतुष्टि नहीं है। मैं भी बीमार हूँ, मैं एक प्रार्थना पंक्ति में से होते हुए जाऊँगा, वापस आकर और दूसरे में से होते हुए जाऊँगा, वापस आकर और दूसरे में से होते हुए जाऊँगा। मैं कलीसिया से कलीसिया और एक स्थान से दूसरे स्थान जाऊँगा। यह ऐसा नहीं है, यह तो उस पर विश्वास करना है। वो मरे हुए में से जी उठा, इससे बात खत्म हो जाती है। कोई और है जो हाथ को उठाएगा, कहे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई और है? मैं विश्वास करना चाहता हूँ। यहाँ कितने लोग बीमार हैं, अपने हाथ को उठाएं, कहें, मैं विश्वास करना चाहता हूँ, मैं आज सुबह संदेश को जानना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये अच्छी बात है। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे पुत्र, अच्छा है, तो ठीक है। अब टेडी, मैं चाहता हूँ कि आप वो महान चिकित्सक बजाएं, बस एक मिनट, यदि आप चाहें तो, अब निकट है। और जब आप ऐसा कर रहे हो, ये ठीक अभी कठिन है, दर्शन हर कहीं इमारत में घूम रहे हैं। देखो, जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा था इसे एक पुनरुत्थान होने दूं, थोड़ा सा और ऊपर, उस राख के ढेर से थोड़ा और ऊपर जिस पर मैं बैठा हूँ, मुझे थोड़ा और ज्यादा प्रकाशन चाहिए। मैं एक बात जानता हूँ, जब तक मैं उस पहली सेवकाई को पकड़े हुए था, दूसरी नहीं आएगी, वो नहीं आई। अब जब तक मैं दूसरे सेवकाई को थामे रहता हूँ, तीसरी नहीं आती है। देखो, मुझे ठीक बाहर कदम को उठाना है, बाहर आना है और विश्वास करना है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है कुछ दिन पहले। अब आप सिर उठा सकते हैं यदि आप चाहें तो। मैंने आपके हाथ देखे हैं, परमेश्वर ने उन्हें देखा है। मैं आपको एक छोटी सी कुछ तो बात बताना चाहता हूं। भाई एड डॉल्टन, मैं सोचता हूं कि वो अभी दरवाजे पर आए हैं। अच्छा, बैप्टिस्ट भाई है वो और उसकी पत्नी। भाई जेफरीज यहीं कहीं पर हैं, ऑथेल जेफरीज और वह यहां पर हैं। मैं जानता हूं कि वो यहीं कहीं पर हैं। हालांकि उन भाइयों ने मेरे लिए वहां केंटकी में जाने के लिए एक सभा को रखा है। वे भाई बहुमूल्य भाई उनके पड़ोस और अपने लोगों से प्रेम करते हैं। उन्होंने सभागार और शास्त्रागार भवन और इत्यादि को लिया। केवल एक रात की सभा करने के लिए उन्होंने शास्त्रागार भवन को किराए पर लिया था। छोटा जेटी हुअर, कभी जो उसका एल जी हुअर ने एलिजाबेथ टाउन में वहाँ पर एक का गठन किया था, और विलो शेट या सोमरसेट पर भाई एड डॉल्टन ने, और भाई दूसरा भाई जो ग्लासगो के आसपास ही था जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वहाँ के लोग जहाँ मेरा जन्म हुआ और पला बड़ा था, जहाँ पहली बार प्रभु का दूत मुझे दिखाई दिया। और मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन मैंने थोड़े इशारे को महसूस किया और मैंने कहा तो ठीक है, भाइयों के कारण मैं सभा को रखूंगा। जैसे ही मैं इस घाटी में पहुंचा, मेरा गला वहां पर बंद हो गया और मैंने 9 दिनों तक बात नहीं की जब तक कि सभाएं पूरी नहीं हो गई। भाई रुडेल, हो सकता है वो भी आज सुबह यहाँ पर हो, जो इस आराधनालय के भाइयों में से एक है। वो और जूनी जैक्सन और वे लोग, मुझे उसके लिए एक सभा को करना था और तुरंत ही मेरा गला बंद हो गया। और पहली बात जो आप जानते हैं, मुझे लगभग 105 तापमान बुखार हो गया। और मैं पहले सभाओं में जा रहा था और डॉक्टर शोइन ने मुझसे कहा, मैंने कहा मेरा गला कर्कश या खराब हो गया है। उसने कहा मैं आपको उन कंठ नली को आराम देने के लिए कुछ दूंगा और आप आगे बढ़कर और प्रचार करें। और मैंने कुछ तो और लिया जो उसने मुझे दिया था। और ये क्या था? इसने उस साइनस या छेद को नीचे दबा दिया और इसे बंद कर दिया। उसके बाद मैं 9 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, बस तेज जलते हुए बुखार के साथ। यहाँ मेरे बहुत से भाई मेरे पास आए, बहुत से प्रसिद्ध भाई लोगों ने आकर मेरे लिए प्रार्थना की। यहाँ भाई ग्राहम स्नेलिंग आए, यहाँ भाई रुडेल आए, ये सारे यहाँ भाई लोग आए, वे सब इकट्ठा हुए, प्रार्थना की और इत्यादि सारी चीजें। मैं प्रार्थना कर रहा था, अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, यहाँ तक फुसफुसा भी नहीं पा रहा था। मैं सोचने लगा ऐसा सब किसके विषय में है। मेरी प्रिय छोटी पत्नी वहाँ बैठी हुई थी, वो और वे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। बस ये वैसे ही बना हुआ था जैसे ये था, वे समझ नहीं पा रहे थे। अब उसने मुझे लेने के लिए कुछ दवा को दिया, लेकिन मैंने इसे नहीं लिया क्योंकि ये नशीली दवा थी। और फिर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और मैं बस यही सोचता रहा, प्रभु अवश्य ही। और उसके बाद सभाएं समाप्त होने के बाद सोमवार के दिन, जो कि आखिरी सभा थी जो शनिवार को होनी थी, और तब मैं विश्वास करता हूँ, और फिर सोमवार को मैंने उठने की कोशिश की थी। मैं बहुत ही कमजोर हो गया था कि कमरे में भी नहीं जा पा रहा था, मैं नीचे बैठ गया। आप जानते होंगे मैं परमेश्वर को परमेश्वर के द्वारा दी गई पत्नी के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ। क्या आप नहीं हैं भाइयों, एक सच्ची पत्नी, एक सच्ची सहयोगी? मैं नीचे बैठ गया, मैंने उसे इशारा किया और उसे अपने पास बैठाया और मैंने कहा, मेडा मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या मामला है। मैंने कहा वे सभाएं वहाँ पर क्यों हुई और परमेश्वर ने मुझे इस तरह से लिटा दिया? मैंने कहा ऐसा क्यों था? और मैंने कहा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या उसने मुझे बुलाया भी है? उसने कहा क्या आपको खुद पर लज्जा नहीं आती? देखा, और उसने मुझे बताया, कहा बिल क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर जानता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, बस केवल चुप रहें। और सो मैं अंदर चला गया, उस तरह से मुझे थोड़ा डांटा, आप समझते होंगे। और सो मैं अंदर चला गया और बिस्तर पर लेट गया। वो चादर बदलने के लिए अंदर आई और उसने उसके हाथों में उन चीजों को लिया, और जब वो बाहर निकलने लगी तो मैंने देखा, और वहाँ एक बड़ी शास्त्रागार इमारत की सूर्य वहाँ ऊपर पर नीचे चमक उठा और धरती पर बरस पड़ा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सूर्य आकाश से नीचे चमक रहा था और वहाँ तीन स्त्रियाँ और एक पुरुष आते हैं, ऊपर आते हैं और वे जैसे बहुत ही छोटे से, जैसे किसी प्रकार की छोटी गोली चलाने वाली बंदूक हो, और उसने कहा जो किलो को ठोकते हैं, और कहा हम आप इन टुकड़ों को पकड़ कर रखें भाई ब्रैनम, और हम आपके लिए इस शास्त्रागार भवन का वापस निर्माण करेंगे। और मैंने कहा तो ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन किसी ने कहा ऐसा मत करना। तो ठीक है, मैं एक टुकड़ा लेने के लिए नीचे झुका इस तरह से, ताकि इसे इस तरह से बनाया जाए, और तभी एक आवाज ने मुझसे बात की और कहा अब वे रास्ते पर हैं ताकि तुम्हें लेकर वापस जाएं, तुम इसका विश्वास नहीं करना। कहा वे हमेशा ही बहुत ईमानदार रहे हैं, और वे तुम्हारे पास यहोवा यो कहता है के साथ आ रहे हैं, लेकिन वे गलत हैं। देखा फ्रेड सॉटमैन, उनमें से बहुत से यहाँ हैं। जब मैंने उन्हें इसके बारे में वहाँ पर बताया था, एक घंटे से भी कम समय में लोग गाड़ी चलाकर मेरे दरवाजे तक पहुँचे। मैंने कहा इनमें तीन महिला और एक पुरुष है, ये बिल्कुल सही बात है, वे यहोवा यो कहता है के साथ आए हैं। जी हाँ महाशय, वे, मैंने कहा अवश्य ही, आप जानते हैं कि उन्हें क्या बताना है, पूरी तरह गलत। देखो अच्छे लोग हैं, लेकिन पूरी तरह से गलत। देखा तब मैंने सोचा अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और फिर मेडा अंदर आकर और वो पीछे चली गई थी, और भाई फ्रेडी ने जाकर लोगों को बताया, और फिर कुछ समय के बाद मैं वहाँ बिस्तर पर था, और मैंने सोचा यह इस तरह से क्यों हुआ है, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ, मैं किसी से क्यों नहीं बात कर पा रहा हूँ, या ऐसा ही कुछ। और मैं वहीं पर लेटा हुआ था, और मेडा अंदर आकर और कमरे से बाहर जा रही थी, और मैंने देखा कि कुछ तो इस ओर जगमगा रहा है, और मैंने देखा और वहाँ ऐसा था, मेरी दीवार खुल गई और मैंने यीशु को देखा। आप में से कितने लोगों ने मुझे ये कहते सुना है कि मैंने अपने जीवन में दो बार यीशु को एक दर्शन में देखा है, और मैंने विश्वास किया कि मैं उसे अंत समय से पहले फिर से देखूंगा। देखो उसे फिर से देखूंगा। अब मैंने देखा और ठीक वहाँ पर आकाश था, ऐसा दिखा जैसे मैंने दीवार के आर पार देखा हो, और वहाँ बाइबल ठीक इस तरह से रखी हुई थी, बड़ी विशाल बाइबल आकाश में रखी हुई थी। तो ठीक है, बाइबल के चारों ओर कुछ तो उजाला था, और बाइबल में से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा क्रूस निकला, और ये इस प्रकार रुका रहा, और उसके चारों ओर से उजाला आ रहा था, और उस क्रूस में से वो चलकर आया। बाइबल ने क्रूस को प्रतिबिंब किया, क्रूस ने उसे प्रतिबिंब किया, और वह चलते हुए बाहर आया और सीधे नीचे चलकर आया जहाँ पर मैं था। मैं इसे बिल्कुल साफ साफ देख सकता था, मैं देख सकता था कि वहाँ पर स्थित क्रूस उसके बालों को प्रतिबिंब कर रहा था, उसके चेहरे के ऊपर बना हुआ था। उसने मेरी ओर इस तरह नीचे देखा, और उसने मुझसे कहा तुम्हारे लिए अपनी नई सेवकाई की पुष्टि होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। उसने कहा मैंने इसे तुम्हारे लिए पहले से ही इसकी पुष्टि कर दी है, इसकी पहले ही पुष्टि हो चुकी है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, समझे। और मैं खड़े होकर और बस एक मिनट उसकी बात को सुनता रहा, और यह मेरे दिमाग में आया, मैंने इसे नहीं सुना, यह तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया था, जैसे कि एक मनुष्य जो उसके सारे जीवन भर पापी रहा है, और वह जानता है कि वहाँ एक बाइबल है, जानता है कि वहाँ एक परमेश्वर है, लेकिन अचानक वो एक उपदेश को सुनता है, फिर कोई तो उसे बताता है ये तुम हो, फिर वही वचन जो हर समय पर वहाँ पर रहा था, फिर ये उसके लिए पक्का हो जाता है। तब वो कहता है प्रभु मुझे क्षमा करना, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक कि वो अपने उद्धार को स्वीकार नहीं कर लेता। उसके बाद वो बाहर जाता है और एक मसीह होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी रोए, कितना भी विनती करे, उसे इसे स्वीकार करना ही होगा। और तब उसने मुझसे कहा तुम्हें इसे उसी तरह से स्वीकार करना होगा, तुम्हें इसे विश्वास करना होगा। मैं हार से डरता हूँ, कुछ भी, मैं डरता हूँ कि मेरी बदनामी होगी, मैं हमेशा ही इससे डरता हूँ, देखते हुए सोचता हूँ कि मैं गलत चीज को बता दूंगा, क्योंकि मैंने बाइबल की चेतावनी को लिया है कि कैसे मूसा को बड़ी सामर्थ दी गई थी, और उसने चट्टान से बात करने के बजाय चट्टान पर प्रहार किया। मैं एहलिया को याद करता हूँ, क्योंकि वह गंजा हो गया था, वे छोटे बच्चे उसे गंजा होने पर चिढ़ा रहे थे, और उसने उन बच्चों को शाप दिया, और उनमें से 42 बच्चों को भालुओं ने मार डाला। देखो, और यह पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन ये तो वो भविष्यवक्ता था जो क्रोधित हुआ था। और मैं उन सारी बातों से होकर गया हूँ, उस बात पर आ रहा हूँ, और वहाँ पर वो खड़ा हुआ मुझसे बातें कर रहा था, और उसने कहा लेकिन तुम बहुतों के साथ चलते हो। उसने कहा मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें अकेले चलना है। तब मैंने देखा था मैं संप्रदायों और हरेक के लिए बहुत ज्यादा सेवा करते आ रहा था। आप देखो, कोई तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको उसका अनुसरण करना होगा। अब उस दर्शन को याद करें जो उसने मुझे मछलियों के बारे में दिया था। आप जानते होंगे और किस तरह से उस पेंटिकॉस्टल छोटे बच्चों को आप अलौकिक चिन्हों को नहीं सिखा सकते। आपको याद होगा और वहाँ पर वो था और मैं इस नए संदेश के ठीक किनारे पर हूँ। उसके बाद और कुछ नहीं, दर्शन ने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा आमीन प्रभु, और मेरी पत्नी वहाँ खड़ी थी लगभग बेसुध, और मैं बिस्तर से कूद पड़ा। मैं पहले की तरह अच्छे से बात कर सकता था। बस एक सेकंड में बुखार का हर एक अंश मुझे छोड़कर चला गया। मैंने डॉक्टर श्वेन को फोन किया। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें। उसने कहा क्या, और मैं वहाँ पर आया और उसने मेरी ओर देखा, उन साइनस और छेद में से होकर देखा, कहा मुझे बताएं क्या बात हुई है भाई ब्रैनम। और मैंने कहा आप मेरी कहानी पर विश्वास करेंगे। उसने कहा मुझे भला कैसे इसमें संदेह हो सकता है, यह तो हुआ है, यही है। देखो ऐसा ही है मित्र, परमेश्वर जानता है कि तुम्हें राख के ढेर पर कैसे रोके रखना है। वो जानता है कि किस तरह तुम्हारे लिए कुछ तो करना है जब तक कि वो उस संदेश को तुम्हारे लिए नहीं पहुंचा देता। देखो जिससे कि कुछ तो करो। और मैं नहीं जानता कितनी अधिक हार है, ज्यादा समय नहीं हुआ मैं गया था, एक रेडियो प्रसारण को सुन रहा था और वहाँ एक सेवक जो पहला कुरिन्थियों 15 से पुनरुत्थान पर प्रचार कर रहा था, और वो पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा था और वह उसके उपदेश के बीच में ही रुक गया और उसने कहा आप जानते होंगे बहुत से लोग हार से डरते हैं। उसने कहा जब जनरल पैटन ने सैनिकों के एक झुंड को खो दिया, कहा तब उन्होंने उससे कहा, उसने वापस भेजा और वो कुछ और को चाहता था और उन्होंने उसके पास कुछ और भेज दिए। उसने उन्हें मार डाला और उसने कुछ और के लिए भेजा, और जब उसके पास वहाँ वो तीसरा झुंड आया, कहा हर बार एक गोली सनसनाते हुए चलती है, वे एक टीम के नीचे भागते हैं या किसी और चीज के नीचे भागते हैं डरे हुए। उसने कहा मेरे पास पुरुषों को भेजो, ना ही छोटे बच्चों को। उसने कहा मुझे ऐसे पुरुष चाहिए जो मरने के लिए तैयार हो। मैं कोई ऐसे पुरुष नहीं चाहता जो मरने से डरते हो। वो कारण जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, यदि वे मरने के योग्य नहीं है तब उन्हें मुझसे दूर रखो, मुझे पुरुष चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन आप दो या तीन लड़ाइयां हार चुके हैं। उसने कहा मैं युद्ध को नहीं हारा हूं, मैंने बस एक लड़ाई को हारा है। मेरे हृदय में किसी ने तो बात की। मुझे याद है आइजनहावर ने कहा जब मैंने एक गोली चलाई, आदेश दिया और उन्होंने बंदूक में एक गोली भरी, उन्होंने इसे चलाया और यह एक असफल रहा और इसने काम नहीं किया। कहा मैंने हार नहीं मानी और खुद को समर्पण नहीं किया। मैं एक गोली को चलाता और दूसरी गोली अंदर डालता, इसकी कोशिश करता रहा। यदि इसने काम नहीं किया तो मैं एक और गोली को अंदर डालता जब तक कि कोई एक गोली काम न कर ले। इसी तरह से इसे किया जाना है। मैं नहीं जानता यह कैसा होगा, लेकिन परमेश्वर मेरे न्याय के समान इस पुलपिट पर है। मैं नहीं जानता कितनी असफलता मिलती है और मैं कितनी लड़ाइयां हारूंगा, लेकिन मैं युद्ध को नहीं हारूंगा। उसने मुझे बताया है कि वो मेरे साथ होगा, मैं खड़ा रहूंगा जब तक मैं इस सेवकाई को पुष्टि होते हुए नहीं देख लेता और इसे कार्यवंत होते हुए नहीं देख लेता हूँ। मैं आज सुबह परमेश्वर के अनुग्रह से आरंभ करूंगा। मैं नहीं जानता कि यह यहाँ काम करेगा या नहीं, यह कहीं और काम करेगा या नहीं, यह कैसे काम करेगा या क्या बात जगह लेगी, लेकिन मैं ठीक वहाँ पर प्रार्थना की पंक्तियों में चलूंगा बीमारों के लिए प्रार्थना करते हुए, जब तक मैं जान नहीं लेता कि क्या हो रहा है। मैंने इसे दो या तीन बार होते देखा है। मैंने इसे हेटी के घर में होते देखा है। कितने लोगों ने कभी गिलहरियों के बारे में कहानी को सुना है और उस लड़की वो छोटी महिला के बारे में सुना है। सबसे पहला व्यक्ति जिसे हम जानते हैं चेलों के दिनों से लेकर, जिसे कभी यह कहने का सौभाग्य मिला जो चाहो मांग लो जब आप वहाँ हो। क्या आपने कभी इस कहानी को सुना है? क्या आपने कभी महिला को देखा है? कितने लोगों ने उसे कभी नहीं देखा है और उस महिला को देखना चाहते हैं जिस पर यह घटित हुआ था? हम हेटी, क्या आप खड़ी होंगी? वहाँ वो महिला है जो अपने घर में खड़ी हुई थी जब मैंने 8 गिलहरियों को देखा था, जो वहाँ पर पूरी तरह से कहीं भी नहीं थी और केवल शब्द को बोलो और वे वहाँ पर खड़ी रहेंगी। यह सच है, यही वे वहाँ पर थी। और मैंने कहा किस बात से गिलहरियाँ वहाँ आ गई? वो उसके मेज पर बैठी हुई थी और उसकी माँ बहन राइट यहाँ पर भाई राइट हैं वहाँ पर बैठे हुए थे। मेज पर वहाँ कितने लोग थे उनमें से आज सुबह यहाँ कितने लोग हैं अपने हाथ को ऊपर उठाएं तो ठीक है वहाँ है वे सारे इमारत में हर कहीं देखा तो ठीक है वे वहाँ पर थे। और मैंने कहा किसी दिन उसकी छोटी अपंग बहन वहाँ पर बैठी थी। मैंने कहा ये दर्शन के द्वारा आना था इत्यादि लेकिन किसी दिन यह भिन्न तरह से आएगा। इस प्रकार से बता रहा था अचानक ही कुछ तो अभिषेक हुआ कि इसे इन लोगों पर छोड़ दो। मैंने ऐसा अभिषेक कभी भी महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हैटी ने सही बात को कहा। मैंने कहा वे गिलरिया कहाँ से आई? वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक उनके लिए जगह भी नहीं थी। बस जैसे ठीक वहाँ एक टेलीफोन के खम्भे पर और मैंने इसे लगातार 8 बार होते हुए देखा था। और मैंने कहा मैं नहीं जानता कि यह कहाँ से आई थी। मैंने कहा केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने एक समय अब्राहम के लिए एक संदेश की पुष्टि करने का यत्न किया और उसने बोलकर एक मेढे को अस्तित्व में लाया क्योंकि उसे पुष्टि करने के लिए एक मेढे की आवश्यकता थी। ये अवश्य ही ऐसा रहा होगा कि मुझे अपने बोलने पर एक गिलरी की आवश्यकता थी और उसने इसे लगातार 8 बार किया या लगातार 7 बार, मेरा मतलब लगातार 7 बार किया। और मैंने कहा और हेटी हो सकता है यह नहीं जानती हो कि वो महिला क्या कह रही थी। देखो किस तरह से इसने धनी और अभिमानियों को दरकिनार किया या पीछे छोड़ दिया। देखो किस तरह से इसने हर एक दरकिनार किया या पीछे छोड़ दिया और वहाँ एक देश की छोटी से निर्धन बूढ़ी महिला के पास गया और मेरी जेब में $20 थे उस महिला को देने के लिए जो उसने आने वाले इस नई कलीसिया पर $50 देने का संकल्प लिया था। और मैं उसे शर्मिंदा करने के लिए इसे नहीं कह रहा हूँ, वो वास्तव में 50 सेंट देने के लिए भी नहीं जुटा सकती थी लेकिन उसका हृदय संदेश में था, वो देना चाहती थी। भाई नेविल मैं विश्वास करता हूँ उन्होंने इसे स्वीकार किया था। बस इसके लिए उसे हम $20 को देने देंगे, इसका बाकी का नहीं लेंगे। और मेरी जेब में $10 के 2 नोट थे। मेडा ने मुझे किराने का सामान लाने के लिए दिया था और मैंने कहा मैं इसे आज उसे वापस दे दूंगा। तब मैंने सोचा किसी ने मुझसे बोला कहा यीशु ने उस विधवा को उसके 3 सिक्के डालते हुए देखा और उसने उसे इसे कभी भी वापस नहीं लिया, उसने उसे देने दिया क्योंकि उसके पास आगे रास्ते पर कुछ तो बढ़कर रखा था। मैं इतना ही जानता था कि वो मुझसे उसी तरह से बात कर रही थी जैसे वो एक विधवा स्त्री, उसका कोई पति नहीं था, उसके पति की हत्या कर दी गई थी। ना ही मैं जानता था कि वही वो एक थी। जब मैंने कहा तब मैं बस $20 को रखूंगा, तुम्हारे पास उसके लिए कुछ और है? मैंने कहा मैं केवल इतना जानता हूँ कि यहोवा अब भी यहोवा यीरे है, वो एक बलिदान को प्रबंध करने में सक्षम है। और हेटी नहीं जानते हुए कि वो क्या कह रही थी उठकर और कहा ये सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं है भाई ब्रैनम। ओ परमेश्वर, यही कहने के लिए वो सही बात थी, यही कहने के लिए वो सही बात थी। लगभग उस समय परमेश्वर की सामर्थ उस स्थान पर उतर आई। मैंने ऐसा अभिषेक कभी भी महसूस नहीं किया। जब ऐसा हुआ मैंने कहा हेटी यहोवा यो कहता है तुम जो चाहो मांग लो, मैं परवाह नहीं करता कि ये क्या है। परमेश्वर ने मुझे ठीक अभी तुम्हारे हृदय की इच्छा को देने का अधिकार दिया है। यदि तुम $10 लाख मांगती हो तो तुम्हारे पास ये हो सकता है। उस छोटी अपंग लड़की के लिए मांगती हो कि वो उठकर और चलने लगे, उसके लिए ऐसा हो जाएगा, कुछ भी और मांग लो। उसने कहा मैं क्या मांगूं भाई ब्रैनम? मैंने कहा जो कुछ भी तुम चाहती हो यहोवा यो कहता है। ओह क्या ही अनुभूति है। उसने यहाँ वहाँ देखा, वहाँ उसके वृद्ध सफेद बाल वाले पिता बैठे हुए थे जिन्हें लगभग मरे हुओं में से वापस लाया गया था। वहाँ उसकी बूढ़ी माँ बैठी हुई थी बीमार, वहाँ पर उसकी छोटी अपंग बहन बैठी थी, लेकिन उसने वही चुना जो सही था। उसके 2 किशोरावस्था के लड़के थे जो बस उस लापरवाह उम्र में थे। उसका बहुमूल्य पति महिमा में चला गया था, वह एक मसीही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे लड़के मसीही नहीं थे। उसने कहा मेरे 2 लड़कों के प्राण, परमेश्वर उसके हृदय को आशीषित करे। मैंने कहा यहोवा यो कहता है तुम्हारे पास वे होंगे। और यहाँ है वे, उन्होंने विश्वास में बपतिस्मा लिया। वे एक रात को मुझे बता रहे थे, यहाँ तक कि वो छोटा सा लड़का वहाँ पर पैर धो रहा था, भाई नेविल के सिर के ऊपर हाथ को रखे हुए था और उसके लिए प्रार्थना कर रहा था जब वो पाँव को धो रहा था। वे 2 छोटे लड़के शायद आज सुबह यहीं कहीं सभा में बैठे हुए हैं। क्या वे हैं हेटी? क्या वे यहाँ आपके साथ हैं? पीछे वहाँ पर पीछे हैं। तुम कहाँ हो लड़को? अपने हाथ को ऊपर उठाओ। वे दो लड़के कहाँ पर हैं? वहाँ है वे, वहाँ सबसे पीछे खड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अच्छी बात है तुम लोग वहाँ हो। अब क्या हुआ? वही बात, कुछ भी होने दो, उसके पास होगा। वो जो मांगेगी उसके पास ये हो सकता था, ये उसे मिल सकता था। अब मैं इसे होते हुए देखना चाहता हूँ। यही संदेश के प्रति लोगों का रवैया या रुख होगा। देखिए उसने किस तरह से कहा। उसने बिल्कुल सही बात को कहा। ये आप जो कहते हैं ये वही करता है। आप जो कहते हैं, सुरुफिनी स्त्री की ओर देखें। जब यीशु के पास आई उसने कहा, प्रभु मेरी बेटी शैतान से बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। हे दाऊद के पुत्र आकर उसे चंगा करें। उसने कहा, यह मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं बच्चों की रोटी लेकर और तुम कुत्तों को इसे दूं। क्या होता यदि वह हम में से किसी को ऐसा कहता? हम कहते मुझे कुत्ता कहा? वैसे भी उसके पास कुछ भी नहीं था, बड़ी कलीसिया ही ठीक है। वह एक पवित्र शोर शराबा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो कुछ और नहीं सिवाय एक बाल जबुल के। हमारे पास ऐसा ही रवैया होता, लेकिन उसका नहीं था। उसने कहा, यह सच है प्रभु, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुत्ते बच्चों की मेज के नीचे पड़े चूर चार को खाने की इच्छा रखते हैं। वो समझ गया। उसने कहा, इस बात के कहने से शैतान ने तेरी बेटी को छोड़ दिया है। इस बात के कहने के कारण यही आपका रवैया है मित्रों। क्या उसने ऐसा नहीं कहा? आपको इसे विश्वास करना होगा मित्रों। आप मेरा विश्वास न करें, मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन आप विश्वास करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। संदेश पर विश्वास करें। यदि आप संदेश वाहक पर विश्वास नहीं करते हैं तो संदेश पर विश्वास करें। यदि कोई मनुष्य वहाँ के कमरे में चलकर जाता है तार या टेलीग्राम को लेकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मनुष्य कैसा दिखता है या वह कौन है, बड़ा या छोटा। आप विश्वास करते हैं उस तार या टेलीग्राम में क्या है, ना ही मनुष्य में। परमेश्वर ने मुझे आपको बताने के लिए भेजा है, मेरे पास एक संदेश है। परमेश्वर ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि वो मरे हुओं में से जी उठा है, कि वो आज सुबह यहाँ पर है। उसने इसे चिन्हों और अद्भुत कार्यों के द्वारा साबित किया है कि वो यहाँ पर है। और आप में से हर एक जन अपनी बीमारी से चंगा हो सकता है यदि आप सही रवैया को लेते हैं जब आप आते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे जब हम केवल विश्वास करो गाते हैं? अब जिन लोगों के लिए प्रार्थना की जानी है वे ठीक यहाँ ऊपर आ जाएं और ठीक ऊपर यहाँ आसपास पंक्ति को लगाएं। अब जब तक आप पूरे हृदय से विश्वास नहीं करते तब तक मत आना। बहुमूल्य प्रभु, यह वह घड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों को चंगा करेंगे प्रभु, और इस तेल को पवित्र करें। अपने आप के निमित्त महिमा को पाए पिता। हम इन्हें यीशु मसीह के नाम से भेजते हैं, आमीन। मैं सोचता हूँ कि क्या हम उन लोगों से यह पूछ सकते हैं जो कि यहाँ पर इस तरफ खड़े हुए हैं, क्या कोई जरिया है जिससे कि उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा स्थान मिल सके, तो हम लोगों को यहाँ से होकर ला सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक यहाँ से होते हुए इस तरह से बाहर जाने के लिए, तब वे सारे इस तरफ से आ सकते हैं, सीधे पंक्ति से आगे एक पंक्ति को बनाते हुए उस रास्ते से बाहर जाने के लिए। कुछ तो अवश्य ही होना है भाई नेविल। आमीन। क्या कहा? ठीक तो ठीक है, नहीं बस ठीक वहाँ उस ओर। भाई नेविल और मैं, जी हाँ, हम उनके लिए ठीक अंतिम छोर में प्रार्थना करेंगे, इसलिए उन्हें इस तरह से उधर से इधर नहीं ला सकते, क्योंकि आप यदि आप ऐसा करते हैं तो आप करने बस एक मिनट रुकना। अब मैं प्रतीक्षा करते हुए श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, यह परमेश्वर का वचन है। मैं कौन? जिसके लिए मैंने जिया है और जिसके लिए मैं मरूंगा, परमेश्वर के अनुग्रह और सहायता से। परमेश्वर मेरा पवित्र न्यायी होने के नाते मैंने आपको सच्चाई को बताया है। मैंने देखा है और ये सारी चीजें इस पर आ रही हैं, यहाँ तक उस छोटी सी मछली से जो वहाँ नीचे जिलाई गई थी। क्या आपने कभी इस कहानी को सुना है? ठीक वहाँ पीछे पुरुष बैठे हुए हैं, वे दोनों वहाँ पर थे जब ये बात हुई थी। इसके होने से एक दिन पहले बताया। अब मैं आपको ये बातें किस तरह से बता सकता हूँ जो है, देखो मैं इन रातों में से एक रात को प्रचार करना चाहता हूँ, प्रति संतुलन। मनुष्य आपको कुछ तो बता सकता है और बस इस तरह से बिल्डिंग बनाता रहता है, लेकिन इसे प्रति संतुलित करने के लिए वहाँ कोई वचन नहीं है, तो अतः ये नीचे आ जाएगा। यदि ये विचारों को परखना और ये दर्शन और ये चीजें जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, यदि वो सत्य नहीं रहा होता था, पहली बात इसका समर्थन करने के लिए एक बाइबल है और वहाँ इसे साबित करने के लिए पवित्र आत्मा था कि मैंने सत्य को बताया है। अब मुझे कार्य क्षेत्र पर लगभग 14 वर्ष हो गए हैं। हर एक आलोचक में से होते हुए गया हूँ जो मेरे सामने आ सकता था। वे पढ़े लिखे, होशियार, बाकी की हर एक चीज के साथ वे एक बार नहीं कर सके। तब आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा, आपने इसे यहाँ पर सुना है। वे कहते हैं बाहर जो लोग हैं श्रोतागण में, यहाँ वहाँ जाकर लोगों से बातें करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि यह मेरे कलीसिया के लोग होंगे जो वहाँ जाकर ऐसे काम को करते हैं, तब वे ऐसा नहीं कर पाए, वहाँ उनमें से बहुत से हैं। अगली चीज उन्होंने कहा कि यह भाई लोगों की तरह होगा जो मेरे साथ जाते हैं, वे वहाँ पीछे खड़े होकर कहते हैं इस मनुष्य के कानों में सुनने की परेशानी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिली पॉल आएंगे और वहाँ ऊपर जाकर प्रार्थना कार्ड को पढ़ते हैं, उन्हें जो लोग बताते हैं, यदि उनके कानों में कुछ परेशानी होती है तो वे कहेंगे उनके कान या उनका पेट। संसार में वहाँ भला किस तरह से ऐसा हो सकता है जिनके पास कोई प्रार्थना कार्ड ही नहीं है? संसार में यह उन चीजों को कैसे पहले से बता सकते हैं जो सिद्ध तरह से घटित होती है? ये ऐसा किस तरह से हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई जानता है जिनके पास उनका सही दिमाग है। उन्होंने यीशु के बारे में भी यही बात को कहा। जब फिलिप्पुस जाकर और नतनेल को लेकर आया, वो तो यीशु का मित्र है, उसने कहा निश्चय ही उसने यीशु को इसके बारे में सब बताया होगा, वह उसके पीछे जा रहा है। और तब उन चेलों ने कहा, या उन बड़ी कलीसिया के चेलों ने कहा, यह मनुष्य बालजबूल है, यह एक ज्योतिष विद्या बताने वाला है। यीशु ने कहा मैं इसके लिए तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन किसी दिन पवित्र आत्मा उसी काम को करने आ रहा है, उसके विरुद्ध एक शब्द को भी कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। अब यदि मैं आप लोगों के साथ उतना ही ईमानदार रहा हूँ जितना मैं जानता था कि कैसे होना है, ओह मैंने हो सकता है कुछ विश्वास मत का खंडन किया होगा जो आपका कुछ धर्म शास्त्र और चीजों में है, लेकिन जिस कारण से मैं ऐसा करता हूँ, पौलुस ने कहा यदि स्वर्ग से कोई दूत आकर किसी और बात का प्रचार करता है सिवाय उसके जो बाइबल कहता है और उसने क्या सिखाया, उसे शापित होने दो। इसलिए मुझे वही अनुसरण करना है केवल जो बाइबल ने कहा है। यदि बाइबल ने कहा वो कल और हमेशा के लिए एक सा है, मैं इसका विश्वास करता हूँ। केवल जो कुछ बाइबल ने कहा है बिल्कुल ठीक वैसा ही मैं विश्वास करता हूँ। मैं बस इसे उसी तरह से कहता हूँ। मेरे पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कोई प्रशिक्षण नहीं था, मैंने केवल पवित्र आत्मा और बाइबल को सुना है। और अब तक इस ईस्टर की सुबह तक 21 वर्षों तक उसने मुझे कभी भी निराश नहीं होने दिया। और मैं आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे उस सेवकाई के विषय में बताया जो आ रही है, क्योंकि पिछले 2 या 3 वर्षों से और मैं हर जगह कलीसियाओं में बताते आ रहा हूँ, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा न्यायी होने के नाते ठीक यहाँ इस सलेम की इस ओर, जब वे गिलरियाँ वहाँ अस्तित्व में आई जहाँ पर कोई गिलरी नहीं थी, ठीक वहाँ पर चार्ली के साथ जो वहाँ पीछे खड़े हुए हैं और उनमें से बहुत से यहाँ कंटकी में हैं, वे गिलरियाँ ठीक उन स्थानों पर आ गई जहाँ वे नहीं थी। बताया कि यह कहाँ पर होगी, जहाँ टोनी और वे बैक्स थे वहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ यह थी बिल्कुल ठीक सीधे वापस आकर, और पहली मनुष्य जाति थी जिस पर कभी बोला गया था वो महिला ठीक वहाँ पर बैठी हुई थी, और ये यहाँ पर है। एक सुबह वहाँ ऊपर जब मैं उस गले की परेशानी से बीमार था, मैंने यीशु को अपने सामने खड़ा हुआ देखा और उसने मुझे बताया कि मेरी सेवकाई की पहले से पुष्टि हो चुकी है। अब क्या बात जगह लेनी है मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज इस पर कदम रखने के लिए मुझे दूसरी एक को एक तरफ रखना होगा। यही एक तरीका है जो समझता हूँ कि मुझे करना है। अब ये ज्ञात हो, ये अंकित हो जाए, जैसा कि अय्यूब ने आज सुबह कहा, लोहे की कलम से चट्टान पर मैं नहीं जानता क्या करना है। केवल एक ही चीज है जो मैं जानता हूँ, वो है कदम को आगे बढ़ाना। उसने मुझे बताया और परमेश्वर मेरा न्यायी है, उसने मुझे बताया, मैंने आपको सच्चाई को बताया है, और यदि परमेश्वर पुष्टि कर चुका है और आपको बताया है, और यहाँ किसी को भी एक बार भी कभी हाथ को रखा गया हो, ऐसा हो सकता है कि ये गलत रहा है, तब यह भी सही है। यह भी सही है। अब जब मैं यहाँ जाता हूँ और पंक्ति के अंत में खड़ा होता हूँ, मेरे पास एक प्राचीन है, भाई नेविल, एक धर्मी व्यक्ति जो हमारे पास्टर हैं, लोगों का अभिषेक करने के लिए मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूंगा, क्योंकि ईस्टर के बाद यीशु का आदेश था, जाकर बीमारों पर हाथ रखो, वे चंगे हो जाएंगे। मैं नहीं जानता कि वह मुझे पंक्ति में क्या बताने जा रहा है, मैं उस सर्वोच्च अभिषेक को महसूस करने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या बात जगह लेगी, मुझे नहीं पता, ये जो कुछ भी है मैं बस वैसा ही करूँगा जैसा वो मुझे बताता है। अब आगे आए, पूरे हृदय से आगे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपको डांटता है, यदि वो आपसे कुछ भी नहीं कहता है, चाहे ये जो कुछ भी हो, आप उसका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। आप देखो, क्योंकि काम को किया जा चुका है, यह तो आप तक पहुँचने का कोई जरिया है। अब भाई ऐसे पैर के साथ हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर विश्वास करें। यदि वो टेलीफोन के जरिए से उस पेट की परेशानी को आपसे दूर कर सकता है, वह निश्चित रूप से आज सुबह उस पैर की ऐसी स्थिति को आपसे दूर कर सकता है। देखो, अब आप पूरे हृदय से विश्वास करें। और वो महिला जो उस छोटे बच्चे के साथ है, उसे हृदय की बीमारी थी, अब और संदेह न करें, विश्वास करें, विश्वास करें। अब मैं चाहता हूं कि कलीसिया में हर एक जन प्रार्थना में रहे, और मैं नीचे प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आप में से हर एक जन बस अब प्रार्थना में बना रहे। जब मैं इस प्रार्थना पंक्ति को पूरी तरह से ला रहा हूं, पूछते हुए, केवल वहां उन पर मेरे हाथों को रखते हुए और आशीष को कहते हुए, और याद रहे, यदि आप में से किसी के पास कोई अस्वीकृत पाप है, तो ये बात आपको ज्ञात हो जाए कि परमेश्वर आपके उस अस्वीकृत पाप के साथ कभी भी चंगा नहीं करेगा। इसे सही कर ले इससे पहले कि आप यहाँ से होकर गुजरे, क्योंकि यह आपको और खराब कर सकता है, समझे। अब यह विचारों को परखना नहीं है, विचारों को परखना, मैं उन चीजों को देख लेता हूँ, लेकिन और यह विचारों को परखना नहीं है, मैं एक नई सेवकाई के लिए खोज रहा हूँ। आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं, तो ठीक है, अब विश्वास करें। अब आइए प्रार्थना करें। जब हम सिर को झुकाते हैं, पिता परमेश्वर, मेरी उंगलियों की निशान अभी भी इस पुलपिट पर है, घंटों घंटों तक, क्योंकि अब लगभग 30 या उससे अधिक वर्ष हो गए हैं कि मैं यहाँ खड़े होकर और संसार भर में प्रचार करता रहा हूँ, और जिस सुसमाचार का मैंने प्रचार किया है, उसको आपने प्रमाणित किया है, क्योंकि संदेश आपकी ओर से आया है। मैं कभी भी किसी स्कूल में नहीं गया, कभी किसी से संपर्क नहीं किया, सिवाय आपके, आपके वचन को पढ़ते हुए और यह देखने की प्रतीक्षा करते हुए कि आत्मा क्या बताएगा। और अब प्रभु, आप मरकुस 11:23 की इस सेवकाई के बारे में जानते हैं, और जानते हुए कि घड़ी निकट है, जानते हुए कि मैंने उन गिलहरियों के बारे में और बेन हैटी और उसके लड़कों के बारे में सच्चाई को बताया है, अब पिता, और जानते हुए कि वह दर्शन मेरे पास वहाँ बिस्तर पर एक सुबह को आया था, मैंने उस बाइबल को देखा और फिर क्रूस को और उसके बाद आपको, और मेरे मन में ये प्रकट हुआ था कि मुझे इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसकी पुष्टि हुई है। अब प्रभु, मैं आज सुबह मेरी कलीसिया में आगे बढ़ता हूँ, इस ईस्टर की सुबह को यहाँ पर खड़ा होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक नए दान के लिए उठाएं, जो अधिक सामर्थ्य भरा हुआ है, लोगों की खातिर अधिक सामर्थ्य भरा हुआ, न ही मेरे उद्धार के कारण, क्योंकि आपने मुझे बचाया है प्रभु पहले से ही, न ही स्वयं के लिए, मैंने सभी बड़ी बड़ी चीजों को ठुकरा दिया है, जिससे कि आपको जान सकूं, जैसा आपने मुझे उस दिन पर उस बड़े आराधनालय में कहा था, मैं तुम्हारा भाग हूं। अब प्रभु, मुझे आपका भाग होने दीजिए, जिससे कि मैं आपसे अनुग्रह को पा सकूं कि आपका आत्मा मुझ में आ जाए, और जब मैं इन बहुमूल्य पीड़ित लोगों पर अपने हाथों को रखूं, होने पाए आपका आत्मा प्रभु, बाकी के काम को करे, मैं बस इतना ही करना जानता हूं प्रभु। मुझे अपना कार्य आदेश याद है, मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने को जन्मा, उन्हें विश्वास दिलवाने के लिए, और ईमानदार बने रहो जब तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर, मैं बस, मैं नहीं जानता कि और अधिक ईमानदार कैसे होना है, मैं वे पीड़ित हैं प्रभु, और मैं खुद तकलीफ से होकर गया हूँ। कृपया प्रिय परमेश्वर, इसे प्रदान करे कि वे हर एक जन चंगे हो जाएं। मैं अब विश्वास के द्वारा आगे बढ़ता हूं प्रभु, जैसे मूसा ने लाल समुद्र की ओर कदम रखा, मैं इस पवित्र पुलपिट से नीचे इस प्रार्थना पंक्ति में कदम रखता हूं, यीशु मसीह के नाम में। होने पाए, वो परमेश्वर जिसने मुझे उन गिलहरियों को दिया, वो परमेश्वर जिसने बेन हैटी को ये शब्द दिए, वो परमेश्वर जिसने मुझे उन्हें बोलने के लिए दिया था, होने पाए वो मेरे साथ जाए, मैं यीशु मसीह के नाम में जाता हूँ। शैतान मैं तुझे दोषी ठहराता हूँ, यीशु मसीह के नाम में उस बच्चे को छोड़ दे, इसे छोड़ दे, इस बच्चे में से निकल आ, चला जा और बालक चंगा हो जाए। मैं अपने भाई पर यीशु मसीह के नाम में हाथ को रखता हूँ और उसके शरीर के पीड़ा को दोषी ठहराता हूँ, आमीन। यीशु मसीह के नाम में उसे उसके अनुरोध को प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहन रूथ को उसकी चंगाई दे, आमीन। मैं बच्ची के लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन मैं उस पुलपिट से नीचे उतर आया हूँ। आप कहाँ रहती हैं? ब्लूमिंगटन, इंडियाना। मुझे इस बच्ची के बारे में एक पत्र लिखना, यहाँ अब पेट में पूरी तरह सूज गया है, क्या आप विश्वास करेंगी महिला कि यह सही है? तब पिता मैं उस पर हाथ को रखता हूँ, इस बच्ची पर, और इस शैतान को दोषी ठहराता हूँ, बच्ची से चला जाए और होने पाए अब यह सामान्य हो जाए और बालक चंगा हो जाए। आप मुझे कुछ दिनों में एक पत्र को लिखना। उस छोटे तिरछी आंखों वाले बच्चे को वहाँ लेटा हुआ देखा, यदि आप अब और संदेह नहीं करेंगे तो आप उस बच्चे को वापस लाएंगे और ये सामान्य और चंगा दिखेगा। मैं इस बहन पर हाथ रखता हूँ और होने पाए कि बहन के पास सुरुफिनी महिला का रवैया हो और होने पाए वह यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हृदय को चंगाई पाने दो। मैं इन शब्दों को बोलता हूँ, इसे चंगा होना है, यह और कुछ नहीं हो सकता। यीशु ने कहा मैं कर सकता हूँ यदि आप विश्वास करेंगे तो। अब यदि वो एक गिलहरी को ठीक इस तरह से प्रकट में बना सकता है जैसे उसने एक बार मेंढे को बनाया था, तो वो उस हृदय को सामान्य और स्वस्थ करके दिखा सकता है। इसे होना ही है। यीशु मसीह के नाम में हृदय को चंगा होने दो, इसे प्रदान करें। अब क्या यह साधारण नहीं है? यह साधारण है। परमेश्वर बहुत ही साधारण है, हम उसके ऊपर से निकल जाते हैं। अब आप इतने साधारण बन जाएं कि यहाँ तक अब इसके बारे में और अधिक सोच भी न सके, यह पूरी तरह चंगा हो जाएगा। प्रभु हमारी बहन यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए, आमीन। बहन, प्रभु अब मैंने इन शब्दों को कहा है उतना ईमानदारी से जितना कि मैं लोगों के सामने अंगीकार कर सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया है यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और संदेह न करो, तुमने जो कहा है वह तुम्हारे पास हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में यह बीमारी दूर हो जाए और आपकी सारी परेशानियां जो आपको है, अब संदेह न करें, अब ठीक उसके और नजदीक जाएं। प्रभु मैं इस छोटे बालक पर हाथ रखता हूँ जो इस भयंकर सिर दर्द के साथ है, यीशु मसीह के नाम में होने पाए यह चंगा हो जाए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पहाड़ उसमें से हट जाए, होने पाए यह चंगा हो जाए, होने पाए हमारा भाई अब चंगा हो जाए, आमीन। बहरा और घूंगा, बहरा बदीर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दिन प्रतिदिन खड़े होकर और प्रचार किया है और वर्ष प्रतिवर्ष मैंने कभी विश्वास को आपके संपर्क में आते नहीं देखा है अपने पूरे जीवन में, लेकिन जो वहाँ पर था कुछ तो घटित हुआ। अब वो अपने कान में बहरा है और उसके पेट में हर्निया हो गया है, उसे यीशु मसीह के नाम में चंगा होने दो, आमीन। अब संदेह न करें। प्रभु, आप उसके शरीर की परेशानी को जानते हैं, उस पर हाथ रखते हुए सच्चे हृदय के साथ यीशु मसीह के नाम में उसे चंगा होने दो, आमीन। मृत्यु एक द्वार पर रखी है, विश्वास अगले द्वार पर। परमेश्वर, पत्थर को लुढ़का दीजिए और विश्वास को अधिकार लेने दो, होने पाए कि कैंसर उसे छोड़ दे, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, होने पाए, वो चंगा हो जाए, मैं उस पर हाथों को रखता हूँ। संदेश अब भी दीवारों में से होते हुए गूंज रहा है, यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वो चंगा हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं अपने हाथों को भाई पर रखता हूँ, ऐसा होने दो प्रभु, आपकी आत्मा और सामर्थ उसके अनुरोध को प्रदान करे, ऐसा होने दो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यह समाप्त हुआ है, अब इस पर संदेह न करें। प्रभु, हमारे भाई की इच्छा है कि आपकी उपस्थिति में आए, इस अवस्था के साथ जो उस पर है, अब यीशु मसीह के नाम में जो कुछ वो मांग रहा है उसके पास होने दो, आमीन। क्या ही महान बात है, इस बालक पर पवित्र आत्मा आने दो, परमेश्वर की महिमा के लिए, जिससे कि वे उसे ले आए, उसके परमेश्वर के राज्य के खातिर होने पाए, वो इसे ग्रहण करे, आमीन। पिता, यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने दो कि हमारी बहन चंगी हो जाए और उसका अनुरोध यीशु के नाम में पूरा हो जाए, आमीन। होने पाए ऐसा किया जाए, आप पवित्र आत्मा को पाओगे, आपसे दूर रखने का कोई तरीका नहीं है, तुम्हें लेना होगा, आपको इसे ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, आप इसके साथ खड़े रहें। बस उस छोटी सी परत को तोड़ दें, केवल कहें, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन के अनुरोध को पूरा करें, आमीन। पिता, यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन के अनुरोध को पूरा करें, होने पाए वो चंगी हो जाए, आमीन। वो एक गिलहरी को अस्तित्व में ला सकता है, लगातार 7 बार वो उस स्त्री को कुछ भी दे देता जो वो मांगती, वो इसे आपको देगा। प्रभु, यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन के अनुरोध को पूरा करें, यह आपका वचन है, आपका धन्यवाद, और होने पाए इसे उसके लिए प्रदान करें पिता, यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आपके प्रियजन। पिता यीशु मसीह के नाम में इसे प्रदान करें, प्रभु यह छोटी यहूदी स्त्री आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, इसे प्रदान करें यीशु मसीह के नाम में, उसके अनुरोध को ऐसा ही हो। स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उसके अनुरोध को प्रदान करें, आमीन। यह छोटी लड़की, जैसे ही तुम वहाँ मंच पर आई, परमेश्वर मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ बता रहा था, वो तुमसे उस घबराहट को दूर कर देगा। प्रभु, मैं इस लड़की में घबराहट को दोषी ठहराता हूँ, होने पाए कि यह उसे इसी घड़ी छोड़ दे और वो यहाँ से बहुत ही आनंदित होकर जाए, यह ऐसा हो यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने अपने पुत्र यीशु को जिलाया, पुनरुत्थान में हम मनाते हैं, होने पाए वह आज इसे और अधिक मनाए यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी बहन पर हाथ को रखता हूँ, मांगते हुए कि होने पाए वो अब यीशु के नाम में चंगी हो जाए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने पाए हमारी बहन चंगी हो जाए, आमीन। ये उसे पकड़ कर नहीं रख सकता, इसे छोड़ना होगा, जा, इसे अभी जाना ही होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने पाए हमारी बहन चंगी हो जाए, आमीन। यीशु मसीह के नाम में मैं इसे चंगा करता हूँ, मेरी बहन, आमीन। यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी बहन को चंगा करता हूँ, आमीन। यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी बहन को चंगा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं इसे चंगा करता हूँ, मेरी बहन, यीशु मसीह के नाम में मैं उसे उसके अनुरोध को प्रदान करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस छोटी माँ के अनुरोध को पूरा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं उसे उसके अनुरोध को प्रदान करता हूँ, प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उसे उसके अनुरोध को प्रदान करता हूँ। शैतान, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम में, महिला को छोड़ दे। क्या आप लंबे समय से बंधे हुए थे? आप अब आजाद हैं, तुम चंगे होने जा रहे हो, तब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा, अब विश्वास करें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं इस बहन को देता हूँ जो अपंग है, उसकी चंगाई को, आमीन। यीशु मसीह के नाम में मैं इस बहन को उसकी चंगाई को देता हूँ, आमीन। यीशु मसीह के नाम में बहन, मैं आपको आपकी चंगाई को देता हूँ, आमीन। ऐसा ही हो, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, इसे विश्वास के द्वारा प्रदान करता हूँ, ऐसा ही हो। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको भी हृदय की तकलीफ से चंगा करने की शक्ति देता है? क्या तुम उस कहानी पर विश्वास करते हो जो मैंने अभी बताई, अपने पूरे हृदय से? तब मैं तुम्हें तुम्हारी चंगाई को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें तुम्हारी चंगाई को देता हूँ। इस महिला का नाम क्या है जो अभी अभी यहाँ वापस गई है? क्या आप पास ही यहीं कहीं रहती हैं? आप याद रखना कि आप ठीक हो गई हैं। ये उतना ही सच है जितना कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। पिता यीशु मसीह के नाम में इसे प्रदान करें, मैं उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पिता यीशु मसीह के नाम में होने पाए उसके पास उसकी चंगाई हो, आमीन। मैं तुम्हें घोषणा करता हूँ, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से एक दिव्य दान में से होते हुए मैं तुम्हें तुम्हारी चंगाई को देता हूँ, उस शैतान को भी बाहर निकालता हूँ। आप विश्वास करती है बहन रोज, हे प्रभु स्वर्ग और धरती के रचयिता, इस बहन रोज ऑस्टिन को इस चंगाई को दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐसा ही है बहन रोज, अब विश्वास करते हुए जाएं, प्रभु हमारी बहन को यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई को दीजिए, आमीन। क्या आप यह विश्वास करती हैं? आप इसके हर एक शब्द पर विश्वास करती हैं? तब मैं आपको यीशु के नाम में आपके अनुरोध को प्रदान करता हूँ, परमेश्वर उसे चंगा करेगा। होने पाए यह ऐसा ही हो प्रभु कि उसका भाई शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। होने पाए यह वो घड़ी हो जब प्रभु मैं उस पर हाथ को रखता हूँ, जब वो पूरी तरह से डॉक्टरों या चिकित्सा विज्ञान से किसी भी इलाज के प्रति आशाहीन है, लेकिन ना ही पुनरुत्थित मसीह से मिलने से, यीशु के नाम में होने पाए वह चंगी हो जाए, आमीन। प्रभु हमारी बहन को प्रदान कीजिए, उसके अनुरोध को ध्यान से सुन रहा था, उसके कहे गए हर एक शब्द को देखते हुए यह राज्य की खातिर है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे यीशु के नाम में उसे प्रदान करेंगे, आमीन। Thank you. प्रभु, आपका सेवक होने के नाते उस माँ की उसके बच्चे के प्रति पुकार को सुनते हुए मैं उस शैतान को दोषी ठहराता हूँ जिसने इसे किया है, और उस स्त्री के विश्वास के अंगीकार पर मैं इस शैतान को बाहर निकालता हूँ। तो इस बच्चे को अपंग नहीं कर पाएगा। यीशु के नाम में चंगी हो जाए, आमीन। वह अभी चंगी हो गई है बहन, बस इसमें संदेह न करें, थोड़ा भी नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। ये आपका बालक है, होने पाए वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। क्या आप बच्ची को कहीं तो ले जाकर और कुछ मिनट के लिए इसकी नहीं सुनेंगे? मैं विश्वास करता हूँ कि बच्ची को कुछ तो हुआ है, आप इसे ग्रहण करेंगे। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के नाम में होने पाए हमारा भाई उसकी चंगाई को ग्रहण करे। प्रभु, होने पाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ उसके शरीर की पीड़ा को दोषी ठहराए और उसे पवित्र आत्मा से भर दे। यह वो घड़ी और समय है। यीशु मसीह के नाम में मैं इसे उसे देता हूँ, आमीन। शुगर जा चुकी है, आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। आप कितने समय से पीड़ित हैं? आपके जीवन भर। क्या आप विश्वास करते हैं कि मसीह आपको चंगा करेगा और आपको इस पीड़ा से छुड़ाएगा, आपको सामान्य बनाएगा? आपके बच्चे, आपका पैर, आप केवल अकेले आए हैं। यदि मेरे अपने भीतर शक्ति होती थी, देखो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इसके लिए विश्वास करने में सहायता करेगा। मैं वो सब कुछ करूँगा जो मेरी शक्ति में है। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? क्या आप उन गिलहरियों के बारे में उस कहानी पर विश्वास करते हैं? आप करते हैं? आप विश्वास करते हैं कि यह संभव है कि आज सुबह कि परमेश्वर आपके शरीर को चंगा कर सकेगा और आप फिर से चलने लगोगे, वैसे ही चलने लगोगे जैसे आप पहली बार चले थे? वहाँ आपके जन्म के समय पर तब कुछ तो हुआ था, कुछ तो ऐसा है जिसने कुछ तो रुकावट दी है, और आप तब से विकसित नहीं हुए हैं। जैसे एक अंग के ऊपर दूसरा अंग बढ़ता जाता है, यह इसे पकड़े रखता है। तो यदि वह अंग उस अंग से निकल सकता है तो वह सीधा हो जाएगा और सही हो जाएगा। देखा, क्या यह सही है? यह एक शाप है, यह एक शाप है। यदि शाप छोड़कर जा सकता है तो आप चंगे हो जाएंगे। देखा, प्रभु, मैं सोच रहा हूँ क्या हो यदि ये मेरा बालक होता था, क्या हो यदि ये मेरा भाई होता था। विश्वास के द्वारा मैं यीशु मसीह के नाम में शाप को निकालता हूँ, आमीन। प्रभु, मैं उस पर अपने हाथ को रखता हूँ और यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए मांगता हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं इस पीड़ित महिला पर उसके चंगाई के लिए हाथ को रखता हूँ, आमीन। बहन नैश, परमेश्वर ने आपको कुछ वर्ष पहले कैंसर से बचाया था। प्रभु, बहन नैश को उसका अनुरोध प्रदान कीजिए। आपके सेवक के नाते मैं से मांगता हूँ इसे किया जाएगा। यही उत्तर है बहन नैश। यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन को उसका अनुरोध प्रदान कीजिए, आमीन। धन्यवाद भाई, और अपने लोगों के पास वापस जाएं जो वहाँ थे। होने पाए परमेश्वर इसे प्रदान करे। क्या ही अद्भुत समय जब मैं वहाँ था, तब आपके लोग वहाँ इर्द गिर्द इकट्ठा हुए थे। आप बंबई में थे जब हम वहाँ पर थे। अच्छा, तब आप इन बातों पर विश्वास करते हैं कि मैं जो आपने सुनी है। प्रभु, जब वो समुन्द्र के पार अपने लोगों के पास वापस जाते हैं, होने पाए तो वह परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए। हर एक अनुरोध में चंगाई पाकर जो वो मांग रहा है होने पाए, वह जाकर और इसे यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करे। आमीन। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में होने पाए, हमारी बहन उसके अनुरोध को ग्रहण करे। प्रभु हमारी बहन के अनुरोध को प्रदान करें, होने पाए उसकी परेशानी ठीक अभी खत्म हो जाए, पुरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह के जरिए से। आमीन। बहन इसे होना ही है, बस होना ही है। आप इसे सुसमाचार में दोहराना चाहती हैं? प्रभु परमेश्वर, जैसा कि यह नौजवान महिला यहाँ खड़ी है, न ही किसी निजी स्वार्थ के वजह से, वह अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही है। उसके लहू में संक्रामक रोग है। मैं उसे उसके अनुरोध को प्रदान करता हूँ एक दूत के द्वारा, मुझे दिए गए एक कार्य आदेश के द्वारा और यीशु मसीह के दर्शन के द्वारा, जो कुछ सप्ताह पहले मेरे कमरे में दिया गया, मैं इस लड़की को उसके अनुरोध को प्रदान करता हूँ। आमीन। इसे होना ही है। आप यहाँ पास में ही रहती हैं? मेम्फिस टेनेसी। मुझे एक पत्र लिखे, आपके पास आपका अनुरोध होगा। भाई ग्रिम्सले, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई ग्रिम्सले, प्रभु हम याद कर सकते हैं कि यह भाई कितनी दूर से आया है और वह कोयले की खदान जिसमें से उसे काटा गया था, वह आपकी आत्मा को और अधिकाई से चाहता है। प्रभु मैं उसे इसे यीशु मसीह के नाम में देता हूँ, उसके पहले के कामों को देखते हुए कि उसने आपके पीछे चलने की कोशिश की है, तब एक कार्यादेश के सामर्थ्य के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे दिया गया, एक दूत और एक दर्शन के द्वारा पुष्टि की गई, मैं भाई ग्रिम्सले को उसकी इच्छा को देता हूँ। उसे विश्वास से पूरा भर दीजिए और वो और नजदीक से चलेगा। क्या हो यदि मैं आपको बताता हूँ, जाकर और स्वस्थ रहो परमेश्वर के राज्य की खातिर। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैंने उन गिलरियों और उनके बारे में जो कहा है, और क्या आप इसे सच होने का विश्वास करते हैं? तब वो मुझे देता है जो मैं इससे कहता हूँ। पहाड़, आपके पास दूसरा नहीं होगा, आपके पास दूसरा नहीं होगा, अब कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हारी दोनों बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं इस अनुरोध को उसे प्रदान करता हूँ जो वो मांगती है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता परमेश्वर, इसे हमारी बहन को प्रदान करें जो उसका अनुरोध है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ठीक है बहन, जाएं, विश्वास करें। पिता, जैसे कि यह महिला यहाँ से गुजर रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे यीशु मसीह के नाम पर उसके अनुरोध को प्रदान करेंगे। आमीन। यीशु मसीह के नाम में मैं इस महिला को उसके अनुरोध को देता हूँ। आमीन। इसमें संदेह न करें। आप विश्वास करती हैं कि आप इसे ग्रहण करने जा रही हैं? तब मैं आपको आपके अनुरोध को देता हूँ, उस सामर्थ्य के जरिए से जो मुझे प्रदान किया गया, यीशु मसीह के एक कार्यादेश के जरिए से, और गवाही दी। जाएं और परमेश्वर आपके साथ हो। भाई फ्रेड, आपके हृदय में क्या है? भाई फ्रेडी सॉथमैन, मैं आपके शरीर में उस विष को दोषी ठहराता हूँ, होने पाए ये आपको छोड़ दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भाई कॉलिंस, प्रभु यह बहुमूल्य भाई पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की इच्छा को रखता है। प्रभु मुझ में जो कुछ भी है उसके साथ मैं अपने भाई कॉलिंस पर इस आशीष को घोषित करता हूँ, इसे प्रदान करें, होने पाए पवित्र आत्मा उस पर आ जाए और होने पाए वो पवित्र आत्मा से भर जाए। आमीन। भाई कॉलिंस, आपको इसे ग्रहण करना है, इसे बस आना ही है। परमेश्वर केवल हमें परखता है। प्रभु उसके अनुरोध को पूरा करें, होने पाए वो आपकी सेवा करें और उसका परिवार उनके पूरे हृदय से आपकी सेवा करें। परमेश्वर हमारी बहन के लिए उसके अनुरोध को पूरा करें, क्योंकि जो कुछ उसने मांगा है होने पाए वो हमारे यीशु मसीह के द्वारा इसे ग्रहण करे। आमीन। परमेश्वर इस भाई को उसकी कलीसिया की सहायता करने के लिए शक्ति दीजिए, होने पाए इसे प्रदान किया जाए। मैं उसे यीशु मसीह के द्वारा इस शक्ति को देता हूँ। बहन, यह एक भयानक चीज है जो आपके पास है, घबराहट। क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं जो आपसे कहूंगा वो सच है? क्या आप अभी इसे विश्वास करती हैं कि अब जो मैंने आपसे कहा है वो सच है? तब मैं आपको यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपकी चंगाई को देता हूँ। यह उतना ही निश्चित है जितना कि मैं पुलपिट में खड़ा हूँ। आपकी घबराहट आप में से जा चुकी है। यह बाहर खड़ा है, पूरी तरह से आप पर है। प्रभु परमेश्वर मेरे बहुमूल्य छोटे भाई को जो यहाँ है, उसकी आत्मा का भारीपन और गहराई जैसे गहराई गहराई को पुकारती है, वो पवित्र आत्मा को चाहता है। उसने आपकी सेवा का आदर किया है प्रभु, हर तरह से जो वो कर सकता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होने पाए ये मेरे भाई पर आ जाए और वो परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह पवित्र आत्मा से भर जाए, उसे ग्रहण करे जैसा कि मैं उसे आपको सौंपता हूँ।